तो ठीक है, अब जहाँ तक मैं सोचता हूँ इसे बंद करना बेहतर होगा। तो ठीक है, हम आज की रात प्रभु की सेवा में यहाँ फिर से आकर बहुत खुश हैं। और कल रात मैंने वास्तव में ऐसा महसूस किया कि सहशताब्दी आ गई थी, और सो अब मुझे कुछ मिला है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ कुछ सवाल प्राप्त हुए हैं और मैं उन्हें अपनी जेब में रखूँगा। मुझे लगता है कि यह प्रार्थना है जिससे कि इस पर प्रार्थना की जाए, और हम और मैं बेहतर उत्तर देने की कोशिश करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ। कहें यदि आप डॉग को बताएं कि क्या वो इसे बंद करेंगे, तो यह कि प्रकाश जो सीधे यहाँ मुझ पर डाला जा रहा है, तो मैं प्रकाश बिंदु के नीचे नहीं रहता हूँ। आप तो जानते हैं मैं उन प्रकाश बिंदु के नीचे रहने वाले प्रचारकों में से नहीं हूँ, तो मैं सोचता हूँ इसके बिना बेहतर होगा। अंतिम मैंने इसके लिए बताया था, डॉक मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप देखें। ओह ओह, आप क्या कर रहे हैं? आप उसे उस ओर घुमाकर और उस पर काम क्यों नहीं करते? ओह ठीक है, बस इसे ऐसे ही रहने दें। हाँ तो बस इसे ऐसे ही रहने दें। ओह नहीं, अब आप इसे नीचे की ओर न करें। हाँ अब मुझे ये ठीक लग रहा है कभी कभी, और मैं उस रोशनी को पसंद नहीं करता जो आपके चेहरे पर चमकती रहती हो, आप जानते हैं, और इसे नीचे की ओर चमकाएं जहाँ पर मैं अच्छी तरह देख सकता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ श्रीमान, ये उसके लिए अच्छा रहेगा। आप जानते हैं आप इन कलीसिया युगों को समाप्त नहीं कर सकते हैं, और आज जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने कहा ओह प्रभु मुझे इतने विषय मिले हैं कि इस पर ठीक 50 उपदेश प्रचार कर सकता हूँ, देखा, और वे बस इसे करने का कोई और तरीका नहीं है, लेकिन बस मुख्य बातों पर प्रकाश डाला जाए, और हो सकता है जब हम किताब को लिखेंगे तब हम इसमें और अधिक बातों को डालने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको यहाँ नहीं देखा भाई, कैसे हो भाई वेस्ट? मैंने अभी कुछ अच्छी खबरों को सुना कि भाई डॉल्टन के परिवार में से सबसे आखिरी दूसरा लड़का आ गया, दूसरी लड़की जो 10 वर्ष की है, कितने वर्ष की है? 9 वर्ष। आपको याद होगा कि मैं नए सेवकाई के नीचे था जब प्रभु ने उसे बताया था कि उसका परिवार बच जाएगा। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, वहाँ खड़ा हुआ, यह नहीं जानता था कि मैं क्या बोलूँगा। पवित्र आत्मा ने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार को देता हूँ, देखा, और ये वहाँ पर है, उनमें से हर एक जन, देखा प्रभु कैसे करता है। देखो उसके वचन सिद्ध हैं, वे कभी भी नहीं चूकते हैं। तो हम दैविक चंगाई की ओर नहीं आना चाहते हैं, हम लंबे समय से बने रहने की कोशिश कर रहे हैं इस भाग पर भविष्यवाणी की तरफ। अब आज रात मैं बस बोलने की कोशिश करूंगा, और यदि मैं कर सकता हूं, और हम इस महान कलीसिया युग के ऐतिहासिक भागों को लेंगे, दूसरे या हम आज रात को तीसरे कलीसिया युग पर हैं, क्या आप इसका आनंद ले रहे हैं? यह बस अद्भुत है, मैं बस वास्तव में इसे सोचता हूं, यह अद्भुत है कि कैसे प्रभु यीशु ने हमें आशीष दी है और हमें इन बातों को दिया, और हम इसे पूरे हृदय से सराहना करते हैं। हमें समय से पहले जानने दिया कि भविष्य में क्या होने वाला है, वह आरंभ से लेकर अंत तक जानता है, और इसलिए हम उसके लिए बहुत ही खुश हैं। सो हम प्रभु पर भरोसा कर रहे हैं कि वो हमें आशीष देगा। और क्या आपने ध्यान दिया, पिछली रात को पवित्र आत्मा ने हमें सेवा समाप्त होने के बाद 3 संदेशों को दिया और 3 प्राणों को दिया, बिल्कुल ठीक। और जब आत्मा बोल रहा था तब ये अंतिम अनुवाद पर वापस आकर इसे दोहराया, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? ओह जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, तब और आत्मा कलीसिया में दान के जरिए से बात करता है। ओह होने पाए, परमेश्वर अब उस आदर को जाने, देखो बस इसे आदर पूर्व बनाए रखें, सावधान रहें, साथ ही साथ शैतान आएगा, आपको इससे हटाकर विषय से बाहर करने की कोशिश करेगा। निश्चय कर ले कि यह हर बार पवित्र आत्मा ही हो, और यदि यह पवित्र आत्मा है तो वह सीधे उस चीज पर बात करेगा जिस विषय पर बात हो रही है, ये कलीसिया की उन्नति के लिए हो, समझे? और फिर यदि आप उनके प्रति आदर पूर्व बने रहते हैं तो परमेश्वर आपको और अधिक देगा, देखो बस अधिक से अधिक जोड़ते जाता है। और जैसे अब कोई तो फोन करता है और पूछता है, लोग आज फोन करते हैं और पूछते हैं कि चंगाई की सभा कब होंगी। अब जैसे ही ये सभाएं समाप्त हो जाएंगी, अगले रविवार की शाम को मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर जा रहा हूँ। मैं अपने गले को थोड़ा सा आराम दूंगा और उसके बाद आने वाले रविवार को प्रभु ने चाहा तो हमारे पास एक चंगाई की सभा होगी जो उसके अगले रविवार की सुबह को होगी। जो होगा मैं नहीं जानता हूँ वो कौन सी तारीख होगी, लेकिन यह एक सप्ताह के बाद होगा जो 18 तारीख के रविवार सुबह के। क्या यह ठीक है भाई नेविल? रविवार की सुबह 18 तारीख को बीमारों के लिए प्रार्थना होगी और इसमें जो यहाँ हमारे पास्टर हैं, मुझे उनके बारे में बहुत कुछ कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आप सभी से चाहता हूँ हमारे पास्टर से मिलने की कोशिश करें। हमारे पास निश्चित रूप से मसीह में एक सच्चा भाई है। हम एक ऐसे भाई के होने के लिए खुश हैं जो पवित्रता के साथ मेथोडिस्ट अनुभव में से होकर लाए गए हैं, और हम सब और मैं नेविल को जानते हैं, यहाँ हर कोई जानता है, कोई भी उसके जीवन पर उंगली नहीं उठा सकता है। मैं वो पसंद नहीं करते हैं कि मैं ऐसा कहूँ, लेकिन फिर भी मैं अब एक छोटी सी गुलाब की कली को देने की बजाय उसके जाने के बाद उसे एक पूरा फूलों का हार दूंगा, समझे? और अब वो समय है। एक रात मैं कलीसिया से बाहर जा रहा था और किसी ने कहा, ओ भाई ब्रैनम, मैं निश्चय ही आपके उपदेश की सराहना करता हूँ, और मैंने कहा आपका धन्यवाद। और उसी तरह कोई तो व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा था, यह यहाँ भवन पर बहुत वर्ष पहले की बात है। एक सेवक ने कहा, ठीक है, परमेश्वर धन्य हो, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे यह कहे, समझे? उसने कहा, मैं चाहता हूँ सारी महिमा परमेश्वर को जाए। मैंने कहा, ठीक है, ये जाती है, देखा? और मैंने कहा, तो ठीक है, मुझे ये पसंद है। मैंने कहा, मैं वास्तव में इसे पसंद करता हूँ, और मैंने कहा, मुझे सच्चा बने रहना है। और उसने कहा मुझे पसंद नहीं है कि लोग मेरे बारे में कहें परमेश्वर धन्य हो। मैंने कहा, मेरे और आपके बीच में बस एक अंतर है, मैं इस बारे में ईमानदार रहता हूँ और आप नहीं। कोई भी पसंद करता है, यदि आप एक छोटे बच्चे को लें तो उसकी थोड़ी प्रशंसा करें, वह और बेहतर काम को करेगा, समझे? ये सही है, देखा? और परमेश्वर हमेशा ही वह अपने बच्चों को बताना पसंद करता है जब वह सही करता है। आप उन्हें बताना पसंद करते हैं जब वे गलत कर रहे होते हैं, तो जब वे सही कर रहे होते हैं तो भला उन्हें क्यों नहीं कहते, समझे? इसलिए मैं निश्चित रूप से भाई नेविल को इस भवन के इस झुंड के पास्टर होने के नाते परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और उस मनुष्य को देखकर मेथोडिस्ट के अनुभव से हैं, क्यों? बस जैसे कि वे गलत होटल में खाना चाहते हैं, तो लेकिन महान पवित्र आत्मा के जरिए से देख रहे हैं, और अब उन दानों में आते हुए और किस तरह से पवित्र आत्मा बिना रुकावट उनका उपयोग कर रहा है। जब वो अपने मन का उपयोग नहीं करते हैं, आप एक ही लय के साथ उनके अनुवाद को देखें, और वैसा ही उतार चढ़ाव जैसे संज्ञा और सर्वनाम और इत्यादि, और इसका सही वापस से उत्तर देना। और ये छोटा भाई, मैं नहीं सोचता कि वह जूनियर जैक्सन है, तो ठीक है, मैं अभी भी जूनी कहूँगा। मैं जूनी जैक्सन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। निश्चित रूप से भाई को प्रभु की ओर से एक महान दान मिला है, और बस हमेशा नम्र बने रहते हैं। अब कलीसिया में हर एक के पास कुछ करने के लिए है, लेकिन इसे किसी और चीज के लिए अलग न करें, इसे बाकी के कलीसिया के साथ मिश्रित होने दें। यह सारी चीजें परमेश्वर के लिए है, देखा, समझे? हर कोई अन्य भाषा में बोलने अनुवाद करने की चाहत न रखे, कुछ तो अच्छा करने की कोशिश करे और बस अच्छे बने रहे। कोई द्वेष न रखे, कोई घृणा न रखे, कोई कड़वाहट न रखे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति कितना भी बुरा हो और वो आपके बारे में कितनी भी बुरी बात को कहता हो, आप उसके विरोध में अपने हृदय में कभी भी बुरे विचार को ना सोचें, क्योंकि ठीक वहाँ पर शैतान बैठा हुआ होता है, वहाँ कुछ तो काम को करेगा। बस इसे ईश्वरीय प्रेम से ढाप ले, अंगीकार करते हुए और ठीक करते हुए, और उन लोगों के लिए अच्छा करे जो आपका बुरा करते हैं। यदि आप केवल उनके लिए ही अच्छा करते हैं जो आपके लिए अच्छा करते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? देखा, वे पापी लोग, कोई भी अच्छा बन सकता है जो उनके लिए अच्छा करता है, लेकिन उन लोगों से अच्छा करो जो आपके प्रति अच्छे नहीं रहते हैं। उन लोगों के लिए कुछ करो जो आपके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। उस व्यक्ति के लिए एक अच्छा शब्द बोले जो आपके विरोध में बुरा बोलता है, और इसी तरह से आप अपने हृदय से सारी करवाट निकालते रहते हैं, और तब आप हमेशा ही हर एक के साथ प्रेम में रहोगे जब तक आप प्रेम में बने रहते हैं। अब आप कहते हैं, तो ठीक है, उसने ऐसा किया, हम न्याय करने वाले नहीं हैं, परमेश्वर न्याय करने वाला है, और आप नहीं चाहेंगे कि उस निर्बल व्यक्ति को निकाल दिया जाए। निश्चय ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं। आप ऐसा नहीं चाहेंगे, इसलिए उनके प्रति दयालु बने रहने की कोशिश करें, और प्रेम सारे पापों को ढांप देता है। जी हाँ श्रीमान, प्रेम करें, बस यही अच्छा है, मसीही ईश्वरीय प्रेम। यदि एक मनुष्य आकर और आपको एक पवित्र शोर मचाने वाला कहकर बुलाता है और सब तरह से नाम को रखता है, अब यदि आप उनसे उसी तरह का व्यवहार नहीं करें, यदि आप उनसे उस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं, बस वहाँ से चले जाएं। लेकिन आपके हृदय में आपको अपने स्थान पर होना चाहिए यह कहते हुए, ठीक है, यह अब हो सकता है भाई, यदि आप समझते हैं जिस तरह से मैं समझता हूँ, तो आप उसी तरह से महसूस करते हैं जैसे मैं इसके बारे में महसूस करता हूँ, देखा, और बस उसके लिए वास्तविक मधुर बने रहें और इस तरह से आगे बढ़े, और यहाँ तक कि हम हो सकता है पूर्व से पश्चिम की तरह भिन्न हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने एक रात को कहा, मेरा एक भाई था, वह एक ऊंचे कद का मनुष्य है, मेलविन, वह लंबा, उसके बाल भूरे रंग के हैं। अब यदि हम किसी भी तरह से उसके जैसे नहीं दिखते हैं, तो क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं होता था? और हमारी प्रवृत्ति अलग अलग है और हमारी इच्छाएं भिन्न हैं, लेकिन फिर भी उसकी माँ मेरी माँ है, उसके पिता मेरे पिता हैं, वह मेरा भाई है, समझे, क्योंकि हम एक ही परिवार में जन्मे थे। अब हम भिन्न हैं। मेलविन एक मसीही नहीं है, वह बेसबॉल, घोड़े की दौड़ और इस तरह की बातों को पसंद करता है, और मैं सोचता हूँ कि उसे चॉकलेट पाई पसंद है, तो मुझे पक्का है कि हम वहाँ पर भिन्न हैं। तो मुझे घोड़ों की दौड़ या बेसबॉल पसंद नहीं है, मुझे मछली पकड़ना और शिकार करना पसंद है, समझे, और वह उसके लिए अपने हाथ को नहीं घुमा देगा और मैं दूसरे के लिए अपने हाथ को नहीं घुमाऊंगा, तो देखें, लेकिन उसे चॉकलेट पाई पसंद है और मुझे चेरी पसंद है। तो फिर अब मैं किसी बात की ओर इशारा नहीं कर रहा हूँ, देखो, लेकिन मैंने कहीं तो एक सभा में कहा कि मुझे चॉकलेट पाई पसंद है, और अगली रात मेरे पास लगभग 5 चॉकलेट कोई या चेरी पाई देकर गया, और मेरे पास 4 या 5 चेरी पाई थी जो बहनों ने पका कर दिया था और मेरे लिए लेकर आए। ओह, वहाँ हमने कमरे में जुबली को मनाया था, लेकिन मेरा इस तरह से मतलब नहीं होता है, समझे, तो मेरा मतलब आपको केवल अंतर दिखाना है, आप देखें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या है, मैं उसे प्रेम करता हूँ, वह मेरा भाई है, और सो वह एक मसीही नहीं है, क्योंकि वह चीजों से दूसरे उजाले में देखता है, मैं उन चीजों को मसीह के उजाले में देखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि वह मेरा भाई नहीं है, क्योंकि हम एक ही परिवार में जन्मे भाई हैं। अब कल शाम को मैंने अंत में एक हवाला दिया, और अब याद रखें, कलीसिया के लिए पहला संदेश उन संदेशों के बाद आया जिसके बारे में आप जानते हैं। इसके अलावा केंटकी में ऐसा था कि सभा में बताया कि रहस्यमय चीजें होंगी जो बहुतों को झटका देंगी, क्या आपको याद है? अब ये टेप पर है, समझे, पिछली रात को उनमें से एक प्रकट हुई थी, तो ये एक प्रकार से बस एक सेकंड के लिए रुक गया, लेकिन मुझे पक्का है कि आपने इसे पकड़ लिया है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने वहाँ पर उस बात को लाया, वह था एक अनंत नरक। बाइबल में ऐसी कोई चीज नहीं है, वहाँ कोई अनंत नरक नहीं है। यदि आपके पास अनंत, यदि आपको अनंत काल के लिए नरक में जला दिया जाए, तो आपके पास वहाँ होने के लिए अनंत जीवन होना है, यदि आप जीवित हैं, और अनंत जीवन का केवल एक ही रूप है, वो है परमेश्वर, समझे, इसलिए। और तब बाइबल एक अनंत नरक के लिए नहीं सिखाती है, यह एक सनातन नरक के लिए सिखाती है, जो हो सकता है कि यह 1 करोड़ वर्षों के लिए हो, मैं नहीं जानता, लेकिन इसे खत्म होना है, इसलिए मुझे इसे वहाँ पर लाना था। मैं इसे कलीसियाओं और चीजों से दूर रखता हूँ जब तक कि मैं इसे कहना मेरे ऊपर है, और फिर यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो कि इसे कहना मुझ पर होगा, और इसलिए हर रात को हम उन्हें पाते हैं। लेकिन अब आज रात के बाद से अपने आत्मिक सोच को रखना आरंभ करें, आप देखें, बस पवित्र आत्मा को ही इसे आपके अंदर डालने दें, और फिर यदि आप इसे सुनते हैं और इससे असहमत होते हैं, तो बस यहाँ से जाकर कहें, बेचारा भाई ब्रैनम, वह निश्चित रूप से नहीं जानता है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, और आप ऐसा करते हैं, और फिर मैं, प्रभु मुझे बताएगा कि सत्य क्या है, लेकिन आप बस मेरे साथ सहानुभूति रखें और मुझे दूर ना करें, तो फिर यह सच भी हो सकता है, लेकिन ओह, मेरे पास अच्छा समय रहा है इस तरह से सोचकर, इसलिए यह हर एक छोर से बात को पूरा करता है, और मैं, ओह, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन वहाँ एक खुलासा हो सकता है, वहाँ कहीं तो जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए हो सकता है आप जानते हो, और आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ये दिखाएगा। और अब और सारी चीजों के ऊपर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और कभी भी शैतान कहीं भी करवाड़ को न दिखाने पाए। देखा, अपने प्राण को इस घड़ी में साफ रखें क्योंकि हम इस संसार के इतिहास के अंतिम घड़ी में हैं। समझे, हम अंत पर हैं मित्रों, बिना एक संदेह की छाया के। जैसा कि हम इन कलीसिया युगों के साथ आगे तक आ गए हैं, हम बहुत ही जल्द देखेंगे और हो सकता है आज रात को इसमें से बहुत कुछ देखें। हम ज्यादा या कम बुनियाद को लेते हुए और एक बुनियाद को प्राप्त कर रहे हैं जहां हमें इसे बंद करना होगा, और अब रात में हम कुछ वास्तविक आत्मिक चीजों को प्रकट करेंगे। अब याद रखें, मैंने इसे कहा है, आप अपने आत्मिक सोच को रखें लेकिन वचनों को देखें। तो यह वचन में होना है और यह वचन के जरिए से होना है, समझे। अब याद रखें, वचन का ज्ञान केवल कहता है, ठीक है, मैं उच्च विद्यालय गया था, मैं बाइबल स्कूल गया हूँ, मैं कॉलेज गया हूँ, इससे कोई जादू नहीं हो जाएगा। सारे फरीसियों और सदुकियों ने भी ऐसा ही किया और यीशु को लाखों मील तक जानने से चूक गए। देखा, वचन, वचनों का प्रकाशन यह बुद्धिमान और ज्ञानियों की आंखों से छिपा हुआ है और ऐसे बालकों पर प्रकट होता है जो सीखना चाहते हैं। तो आइए आप और मैं बालक बने और बस अपने हृदय को खाली करें और कहें, प्रभु आप हमें बताएं, और हम सुन रहे हैं, और उसके बाद आत्मिक चीजों को लागू करके पकड़े। अब यह याद रखें कि वे वचन जो आज रात से बोले जाएंगे कि आत्मिक चीजों को लागू करके पकड़ें, कि हम एक महान रहस्यमय कलीसिया युग के अंदर आ रहे हैं। अब मैं सोचता हूँ कि यही सब था। अब याद रखना, कल रात को हम प्रत्येक रात को दूसरे कलीसिया युग पर जाएंगे, और मुझे पक्का है कि हमारे पास कल बहुत समय हो सकता है इस पर पूरे दिन तक बताने के लिए, और फिर कल रात को भी। लेकिन देखो, उसमें से बहुत से लोग काम पर होंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इस संदेश के बारे में कुछ प्रकाश को डालूं यहाँ पर जो प्रचार किया गया है, उसकी मुख्य बातों को बताऊं, जिससे कि आप उनमें से किसी एक बात को लेकर और तब हम आगे बढ़ सकते हैं। इसे लेकर बताता रहूं, इतना तक वहाँ कुछ बताना न पड़े कि ये संदेश कहाँ पर जा रहा है, आप समझे। लेकिन और तब आप इसे घर पर अध्ययन करें, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और आप मेरे लिए प्रार्थना में रहना, और परमेश्वर हमें उसके विश्वास करने वाले बच्चों की नाई हमें एक साथ आशीष दे। अब हम आरंभ करने से पहले मैं सोचता हूँ कि यदि ये आपके लिए ज्यादा मुश्किल न हो तो क्या हम खड़े हो सकते हैं? और आप जानते हैं कि मैं खड़े होकर प्रार्थना करना क्यों पसंद करता हूँ। यीशु ने कहा, जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना करना, हमारे पिता तू जो आसमान में है, फिर एक दूसरे को क्षमा करें। आपने देखा, और फिर गिदोन ने अपनी सेना को एक बार इस बात से चुना कि जिसने नीचे झुककर और सिर को झुकाकर और पानी को पिया, या वे जिन्होंने खड़े होकर और पानी को पिया, आप समझे। इसलिए वे जो लोग गिर गए, वे जो खुद को मूर्तियों के सामने दंडवत कर रहे थे, और वो जानता था कि वे जाने के लिए विवश नहीं थे, इसलिए वो जो खड़ा रहता उनकी आंखें हर समय देखते हुए, इसी तरह से हम करें, खड़े होकर और प्रार्थना करें। अब मैं घुटने टेकने और प्रार्थना करने में भी विश्वास करता हूँ, लेकिन खड़े होकर और प्रार्थना करना, मैं सोचता हूँ कि यह हमारे लिए एक प्रकार से कुछ मायने रखता है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, हर एक हृदय को भी झुकाएं। महिमा में स्वर्गीय पिता, जैसा कि अब हम पूरी तरह से आपके न्याय के सिंहासन की ओर बढ़ रहे हैं, और हम आपके पास मांगने के लिए नहीं आते हैं कि आप हमारा न्याय करें, क्योंकि हम सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हम आते हैं विनती करते हुए, दया करें ओ प्रभु। आज रात हम पर आपकी पवित्र आत्मा को ढेल दीजिए, इसलिए नहीं कि हम योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि हम अयोग्य हैं, और इसे समझते हुए और इसे पहचानते हुए, और हम अपने नाम से नहीं आते हैं क्योंकि यह योग्य नहीं है। हमारा कोई न्याय नहीं है या कुछ भी नहीं है, हमारी अत्यंत धार्मिकता आपकी दृष्टि में मैले तिथरे के समान होगी। इसलिए हम नर्मदा पूर्वक प्रभु यीशु के नाम से आते हैं, उसे हमारे सामने लाते हुए जो उसकी वाचा का लहू है, इसे हमारे हृदय पर लगाते हुए और कहते हुए, परमेश्वर हम पापियों पर दया करें जो पीड़ा की घड़ी में दया की याचना कर रहे हैं, कि जब किसी दिन अंतिम उपदेश को प्रचारा जाएगा तो हम नहीं जानते कि यह कब होगा। अंतिम बार वातावरण में एक चिल्लावट होगी, बंद बाइबल पुलपिट पर रखी होगी, हथियार ढेर हो जाएंगे और टप टप की आवाज हो रही होगी, सूरज डूब जाएगा। हे परमेश्वर, मुझे उस घड़ी में छुपा ले, हे युगों की चट्टान। और हम देखते हैं कि अब कोई बच निकलने का जरिया नहीं है, कुछ भी नहीं सिवाय आपके जरिए से। हम देखते हैं कि राष्ट्र टूट रहे हैं, हम बाइबल को पूरा होते हुए देखते हैं, हम इसराइल को जागृत होते हुए देखते हैं, हम कलीसिया के लिए संदेश को देखते हैं, हम घड़ी को बस लगभग पूरा होते हुए देखते हैं। उस समय पर वे महान बातें प्रकट हो जाएंगी और सात मोहरें खुल जाती हैं। परमेश्वर परमेश्वर हे परमेश्वर, हम पर दया करें, हम दया के लिए विनती करते हैं और आपके सेवक के रूप में मैं आज रात दैविक उपस्थिति में हर एक के लिए दया की विनती करता हूं। परमेश्वर होने पाए हमारे बीच एक भी व्यक्ति ऐसा न हो जिसके प्राण पर पाप हो, लेकिन होने पाए यह ठीक अभी प्रभु यीशु के लहू से साफ हो जाए, जिससे कि हम सभी आकाश के उस ओर उस आनंदमय स्थान में मिल सकें। और जैसा कि मैं आज रात इस वचन की ओर बढ़ता हूँ, पिता ओह मैं अयोग्य हूँ, परमेश्वर हम में से कोई भी योग्य नहीं है, हम अंगीकार करते हैं कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं पिता, लेकिन हम पूरी तरह से पवित्र आत्मा पर निर्भर हैं कि वह हमारे लिए प्रकट कर सके। जब हम हमारे मानसिक ज्ञान में से होकर खोलते हैं जो आपने हमें दिया है उस इतिहास की बातों से, तो होने पाए पवित्र आत्मा हमारे हृदय के लिए आत्मिक बातों को लागू करे, इसे प्रदान करे पिता, क्योंकि हम आप पर रुके हैं। यीशु आपके पुत्र यीशु के नाम में आमीन। बैठ सकते हैं।
In the second chapter of the book of the Revelation and the second church, the third church age begin. Pardon me.
प्रकाशित वाक्य की किताब के दूसरे अध्याय में और दूसरी कलीसिया है, तीसरा कलीसिया का युग है, आरंभ। मुझे क्षमा करें। हमारे पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा धरती पर पूरी हो जैसे स्वर्ग में है। पिता हम आपसे मांगते हैं कि हमारे साथ हो और हमें आशीष दे, और लोगों के बीच इस बड़ी संकट की घड़ी में हमें बुद्धिमान सर्वोत्तम रचनाकार बनने में सहायता करें। जब गड़बड़ी और सारी बातें बढ़ती जा रही हैं, सबसे उत्तम करने में हमारी सहायता कीजिए प्रभु, आपका सेवक होने के लिए मसीह के नाम के जरिए से, आमीन। अब मैंने पहले कहा कि हो सकता है आप जानते हो या आपने ध्यान दिया कि वचन का अनुवाद नहीं आया था। हमारी बहन पवित्र आत्मा से अभिषेक थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसने संदेश चालू होने के बाद संदेश या वचन को बोलने लगी। आप देखना, ये बात बस जरा व्यवस्था से बाहर है। अब कोई बात नहीं प्रिय बहन, जो भी आप हैं, पवित्र आत्मा आप पर है। ओ, इसे इस तरह से संभाल पाना बहुत ही कठिन होता है, मैं जानता हूँ, ये बस उसी तरह से है, या जब आप कुछ और कह रहे हो और देखें, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आपने हो सकता है इसे महसूस किया हो इससे पहले कि हम आरंभ करते, आप देखना, और इसी कारण से देखें, ये वापस आता है जब पवित्र आत्मा के कार्य को करता है। भविष्यवाणी करने वालों की आत्मा भविष्यवक्ताओं के अधीन होती है, आप देखना, ये आप हैं। अब हो सकता है कि पवित्र आत्मा आपको फिर से अभिषेक करे, तब मैं आशा करता हूँ वो करेगा, तब वो सभा समाप्त होने के बाद इसे करेगा, और आप देखना इसका अनुवाद आएगा, देखो, क्योंकि यह तब ठीक व्यवस्था में होना चाहिए, आप देखना। लेकिन हम अब यहाँ पर वचन की ओर बढ़ रहे हैं, देखो, तो अब यह वास्तव में परमेश्वर की ओर से था, यह वास्तव में था, मैं इसे विश्वास करता हूँ और पूरे हृदय से महसूस करता हूँ, तो मुझे लगा कि इसके पीछे अनुवाद आएगा, आप देखें, लेकिन पवित्र आत्मा यह समय नहीं था। उसने कलीसिया के लिए बहन को एक संदेश दिया, लेकिन यहाँ पर जहाँ वो अपने संदेश के काम को कर रहा है, आप देखना, वो अपने आप से गड़बड़ी में नहीं लाता है, वह सारी बातों को व्यवस्था में रखता है। मुझे पक्का है कि हर कोई समझता है, आप देखना, ये सही बात है। अब प्रकाशित वाक्य की किताब में दूसरे अध्याय में से, और हम आज रात पिरगमुन युग के साथ आरंभ करते हैं, 12वां अध्याय। अब पिछली रात को हमने 11वें पद पर छोड़ा था, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। अब पहले कलीसिया के युग में हम पाते हैं निकोलियों ने अंदर आना आरंभ किया था, परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया, यीशु ने स्वयं को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की नाई प्रकट किया, ना कि किसी और को, ना ही अंश अंश में, ना ही परमेश्वर को टुकड़ों में, वह अकेला ही परमेश्वर था। अब पिछली रात के कलीसिया युग में हम देखते हैं कि वह द्वार पर खड़ा हुआ था और उसने ये बातें कलीसिया को लिखी और उन्हें उनकी दरिद्रता के बारे में बताया, लेकिन उसने कहा कि वे इस निकलियों और इत्यादि जिससे उसने घृणा की थी। पिछली रात उन्होंने शहीदों का ताज पहना था, उसने उन्हें बताया मृत्यु के निमित्त डरना नहीं कि वो उनके साथ होगा, और फिर उस अंत पर उसने कहा वह जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। अब यदि एक मृत्यु आती है तो हम इसके बारे में जानते हैं, तब कहीं एक और मृत्यु को होना है, क्योंकि एक मृत्यु जो हम यहाँ इस देह में मरते हैं, दूसरी मृत्यु हम इसे आत्मा में मरते हैं, प्राण में। यह है, और वो प्राण जो पाप करता है वह निश्चय ही मर जाएगा। ये ऐसा मरना है, हर एक चीज से पूरी तरह से बाहर हो जाना। आप देखें, आप मृत्यु का मतलब होता है दूर उठा लिया जाना, इसे लेकर चले जाना, दूर छिपा देना। फिर जब हमारे प्रियजन मर जाते हैं तो वे अस्तित्व से बाहर हो जाते हैं, जहाँ तक हम जानते हैं हम उसे मृत्यु कहते हैं। लेकिन एक मसीही नहीं मरता है, कोई भी वचन ये नहीं कहता है कि एक मसीही मरता है, क्योंकि उसके पास अनंत जीवन होता है। जब एक पापी मरता है वह समाप्त हो जाता है और उसका प्राण अतः मर जाएगा, लेकिन जब एक मसीही मरता है तो वह बस यीशु के साथ फिर से वापस लौटने के लिए रुका रहता है। ओह, मैं आशा करता हूँ कि मेरे पास आज रात का समय है उस दर्शन के अंत में जाने के लिए, जहाँ हम वापस आएंगे और आप इसे देखेंगे किस तरह यह उसी चीज को दूसरी मृत्यु मिलाता है, उसी अध्याय पर जिस पर आज रात हम हैं, आगे उसी बात को बताता है, और यहाँ क्या ही एक सुंदरता से इस बात को लागू करना है। अब आज रात हम इस पत्र को जल्दी से पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐतिहासिक रूप से जानकारी है। हम पहले इसे लेना चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा लंबे समय तक नहीं रोके रखें। अब इन सभाओं के समाप्त होने पर कभी भी मैं इसे बहुत जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। यदि आप इससे संबंधित बातों को लेना चाहते हैं तो यहाँ भाई मर्सियर के पास ये सारी बातें हैं। मैं इन सब बातों को लेकर सीधे उनके हाथ में सौंप देता हूँ और वो आपको दे सकते हैं, क्योंकि वो इसे किताब पर लिख रहे हैं। वो आपको कोई भी चीज दे सकते हैं, तो आप उस पर चाहते हैं तो ये ठीक होगा भाई मर्सियर। 12वां पद, और पिरगमुन की कलीसिया की दूत को यह लिख कि जिसके पास दोधारी और चौकी तलवार है वह यह कहता है कि मैं यह तो जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सियासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान को खाएं और वे विचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो शिक्षा को मानते हैं, यह एफिसियस में वहाँ वापस आता है। अब यह एक सिद्धांत बन गया है, निकलियों की शिक्षा। आपको याद होगा मुझे एक रात को कहते हुए वो उस तक कैसे पहुँचा था, एफिसियस में एक कार्य। अब यह एक सिद्धांत है, निकलियों की शिक्षा, जिन बातों से मुझे नफरत है। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर उनके साथ लड़ूंगा, ना ही सच्ची कलीसिया, उनसे अपने मुख की तलवार से। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। अब प्रभु इस पर अपनी आशीष को जोड़े और अब हमारी सहायता करे जब हम कोशिश करते हैं। अब इस कलीसिया की पृष्ठभूमि पर यह तीसरा कलीसिया युग है जिसे पिरगमुन कहा जाता है, और वो तारीख ये कलीसिया अस्तित्व में थी वो एडी यीशु की मृत्यु के बाद 312 एडी 312 से लेकर 606 थी। वो जो युग था झूठे सिद्धांत का, शैतान के झूठ का, पोप के कार्यकाल शासन की बुनियाद का और राज्य और कलीसिया से विवाह का, जो इनाम था छिपा हुआ मन्ना, एक सफेद पत्थर, और वो तारा इस युग का दूत, यह सब जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे करने को लगाया, मैंने संत मार्टिन को लिया है। यह वो प्रकाशन था जो मुझे इस पर दिया, क्योंकि उस समय के दौरान अन्य संतों को पढ़ रहा था, तो मैंने संत मार्टिन को लिया क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था। मेरी राय में वह संत पैट्रिक की तुलना में 10 गुना अधिक प्रेरित था। अब संत पैट्रिक संत मार्टिन का भांजा था। संत मार्टिन की बहन संत पैट्रिक की माँ थी, और संत मार्टिन निश्चय ही वह संत पैट्रिक का मामा था। अब उसका जीवन काल एडी 315 से लेकर 399 तक था। अब यहाँ पर वो कारण है जो मैंने उसे उस दिन के अन्य संतों से अधिक प्राथमिकता दी, क्योंकि जिस तरह से उसने अपने आप को संगठित किया था और परमेश्वर की प्रेरणा के नीचे, मैं विश्वास नहीं करता हूं कि अब कैथोलिक कलीसिया ने उसे संत की उपाधि नहीं दी। वे उसे पहचान नहीं पाए, और यही वो दूसरा कारण है कि मैंने उसे चुना। हाँ, और ये सब जो हम देख रहे हैं, इसके पास आत्मिक सेवकाई थी जिनको आरंभ की कलीसिया ने ठुकरा दिया। निकलियों की कलीसिया ने उससे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि इन बातों की वजह से वे आत्मिक थे। और जैसा कि मैंने यहाँ चित्र बनाया है, कलीसिया को दबोचा जा रहा है, और निकोलियन की शिक्षा ज्यादा संख्या में लोगों के पास थी, और सच्ची कलीसिया कुछ ही संख्या में थी, जो हमेशा से रहा है। और जैसा कि मैंने आरंभ से कहा, यह यीशु ने कहा था, डर मत छोटे झुंड, यह तुम्हारे पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य को दे, इसलिए मैं राज्य को आत्मिक राज्य पर लागू करता हूँ। और हमारे पास एक आत्मिक राज्य है, और हम इस बात के लिए बहुत ही खुश हैं, और इस राज्य में एक राजा है। याद रखें, वह संतों का राजा है, वे जो संत हैं, वह उनका राजा है जो उनकी अगुवाई करता है। संत मार्टिन का जीवन, जो कलीसिया के युगों में किसी से भी सबसे महान चमत्कार से भरा हुआ जीवन है, वह संत पौलुस से होते हुए आगे तक, वह सबसे आत्मिक मनुष्य था। वह था उसके अद्भुत कार्य में से जो एक पहला कार्य था, वह आरंभ से एक सैनिक था, मैं सोचता हूँ। और फिर एक दिन वो वहाँ से गुजर रहा था, और वहाँ कोई तो था, एक मनुष्य पड़ा हुआ था ठंड में और कपकपा रहा था, और सभी लोग जो चाह रहे थे या इच्छा नहीं थी, लेकिन वे उस मनुष्य की सहायता कर सकते थे, वे वहाँ उसके पास से ऐसे ही गुजरने लगे जैसे उन याजक और लेवियों ने अच्छे सामरिया में किया। लेकिन जब संत मार्टिन उसके पास आया, उसने एक मसीह विश्वासी की नाई अपने कर्तव्य को पहचानते हुए, उसके पास एक कोट था, उसके कंधे पर एक लंबे अंग रखे की तरह रखा था, उसने उसकी तलवार से उस कोट के दो टुकड़े किया, उसके आधे भाग को भिखारी को दे दिया और उसके दूसरे आधे को रख लिया। और उस रात उसका जीवन कार्य आरंभ हुआ, क्योंकि उसे दर्शन में यीशु मसीह दिखाई दिया, उसी वस्त्र में लिपटा हुआ जिसे उसने दो भाग करके आधा काटा था, जो वचन को पूरा करता है कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। सो इसे एक सीख के लिए ले लेना, जो कुछ भी आप किसी के लिए करते हैं, आप उसे मसीह के लिए करते हैं, बस याद रखें। अब आप आइए इसे एक साथ कहें, जो भी आप दूसरों के लिए करते हैं, तो आपने मसीह के लिए किया है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आपके बारे में क्या सोचता है। यह तो ऐसा है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, देखो यह आपके लिए आशीष को लाता है। यह उसका पहला अद्भुत कार्य था, और उसकी सेवकाई का आरंभ था। इसे बताने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं आपको कल रात को और हर रात को फिर से चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको लंबे समय तक रोके नहीं रखना चाहता। तो ठीक है, अगला अद्भुत कार्य जो मैंने आज रात को बोलने के लिए चुना, वह पूरी तरह से मूर्ति पूजकों को नष्ट कर रहा था और वह दृढ़तापूर्वक रोम कलीसिया के विरोध में था। वह उन सारी पहली कलीसिया के रोम के बिशपों से पूरी तरह से असहमत था। वे संसारिक और इसी तरह से इत्यादि होते जा रहे थे और वह उनके विरोध में खड़ा था। वह निश्चित रूप से उनके विरोध में था। यह एक अद्भुत बात थी कि वो यहाँ तक इस तरह के समय में रहता था। अब लेकिन वो एक दिन पागान मूर्ति पूजकों के वृक्ष वाटिका को नष्ट कर रहा था और एक पागान वेदी को फाड़ रहा था और पागान की वेदी के पास एक पवित्र पेड़ लगा हुआ था और वो इस पेड़ को काट रहा था और बहुत से वहाँ खड़े होकर इस बात पर क्रोधित हो रहे थे। उसने कहा, यदि मैं परमेश्वर का जन होऊंगा, जिस तरफ वो पेड़ का झुकाव है वहाँ मुझे बांध दो और मुझ पर वो पेड़ गिरने दो। यदि मैं परमेश्वर का जन होऊंगा, यदि मैं परमेश्वर का जन नहीं हूँ तो पेड़ मुझ पर गिरकर मार डालेगा। यदि मैं परमेश्वर का जन हूँ तो मेरा परमेश्वर उस पेड़ को कहीं दूसरी ओर घुमा सकता है, जो सचमुच एक चुनौती है। सो उन्होंने पेड़ को काटना आरंभ किया और जब पेड़ गिरने लगा तो वो पेड़ पीछे की ओर घूमकर और तमाशा देखने वाले झुंड को मार डाला। परमेश्वर ने उसे पीछे ऊपर पहाड़ी की ओर घुमा दिया। एक अद्भुत कार्य। हर समय उसकी सभाओं में चिन्ह चमत्कार होते थे। एक और अद्भुत कार्य जिसके बारे में मैंने बोलने के लिए सोचा था कि एक मृत बालक था जिस पर उसने अपने शरीर को लिटा दिया था और वो बालक फिर से जीवन में आ गया जब उसने इस बालक के लिए कुछ समय तक प्रार्थना की थी। एक और बात जो मेरे लिए थोड़ा हटके था, जो उस शासन के लिए थी, और वह शासक परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे हुए कुछ लोगों को मारने जा रहा था और निश्चय ही उस समय पर वो रोम की पहली कलीसिया के बिशप का दाहिना हाथ था और वह असल में एक पोप था। इससे पहले कि उसे पोप कहकर बुलाते, उसका नाम DAMASUR दमासुर था और वो उन सारे मसीह लोगों को मृत्यु के लिए डालते जा रहा था जिससे उसे मौत के घाट उतारने का एक अधिकार मिल सके। और इस शासन की पत्नी जो एक पगान थी और उसके अपने हृदय के ऊपर अंधकार था, और जब यह संत हुआ, संत मार्टिन बीच बचाव करने के लिए आया, तो उसकी पत्नी ने उसे उसके सामने खड़ा कर दिया कि वह इन मसीही लोगों को मारने के लिए बीच बचाव करने का प्रयास करेगा। निश्चय ही जब वह अंत में उसके पास गया, कुछ भी भला नहीं हुआ, क्योंकि वह मनुष्य तो बस इस पोप का दाहिना हाथ था। अतः उसने किसी भी तरह उन पवित्र आत्मा से भरे मसीहों को मार डाला। लेकिन संत मार्टिन उसके साथ भेंट करना चाहता था और दरबानों ने उसे फाटक पर ही रोक दिया, तो संत मार्टिन उसके मुंह के बल गिरकर और वहाँ लेट गया और प्रार्थना करने लगा, जब तक कि परमेश्वर ने उसे अंदर जाने के लिए नहीं दिखाया। जब वह वहाँ से उठा तो वह उन ताले लगे हुए दरवाजों के पास चला गया और वे अपने आप खुल गए। वो सीधा आगे चला गया। अब यह इतिहास है, यह बस कोई ऐसे ही किसी के बारे में नहीं लिख रहा है और बस ऐसे ही थोड़ा, यदि कोई बात जिसे वे पक्षपात करेंगे, यदि यह किसी कलीसिया के लिए बात करना है, या मैं कहूंगा कम से कम विशेषकर पापल कलीसिया, जो वे उन बातों का उल्लेख नहीं करेंगे, लेकिन देखो इतिहास सच्चाई को बयान करता है, समझे। और यह मनुष्य सीधा ऊपर चलकर गया, वो संत मार्टिन और हरेक पहरेदार के पास से होकर गया और बाकी हरेक के पास से होते हुए सीधा शासक के सामने, और वो शासक परमेश्वर के सेवक का आदर करना नहीं चाहता था। आप जानते हैं ऐसा ढंग नहीं होता है। तो उसने बस अपने सिर को घुमा दिया और यहाँ तक उसका आदर भी नहीं किया। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, उसने उनसे बात करने की कोशिश की और उसने बस अपने सिर को घुमा कर रखा था। और परमेश्वर इन मूर्ति पूजकों से अपने सेवक के प्रति आदर को दिलवाने जा रहा था, इसलिए उसने तब वहाँ की चीजों को आग लगा दी और इसने उसे अग्नि से झुलझाकर उसके बैठने की कुर्सी पर से उठा दिया, उसे खड़ा कर दिया, उसे खड़ा होने को लगाया। अब यह बाइबल का इतिहास है। निशियन परिषद, उसे परमेश्वर के सेवक का आदर करना था, उसने उसे खड़ा होने को लगाया, इसने यहाँ तक उस बैठने की कुर्सी को भी अग्नि से झुलझा दिया जहाँ वो बैठा हुआ था। आग उसके शरीर में से होते हुए निकली और बैठने की कुर्सी के नीचे अग्नि से झुलझ गई और उसे वहाँ से कूदना पड़ा। परमेश्वर के पास इन चीजों को करने का एक तरीका है, आप जानते हैं। परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान को खड़ा करने में सक्षम है, और आपको याद होगा वही परमेश्वर आज रात हमारे बीच में वास करता है, ये वही परमेश्वर है, तो ठीक है। और फिर एक और जो मुझे पसंद है, और फिर मैं रुकूंगा। मुझे यहाँ कुछ मिला है, लेकिन मुझे अब ये वो बात है जो मुझे बहुत पसंद आई थी। जब वो एक दिन अपने अध्ययन कक्ष में अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, और वह एक महान पुरुष था, और उसने इस पवित्र आत्मा से भरे कलीसिया को आगे लेकर गया, और हम सबको, वह एक उसके पास सब आत्मा से भरे हुए लोग थे, उसके सारे सभा के लोग, और वहाँ बाहर सारे देश भर में मसीह लोगों ने चमत्कार और चिन्ह और आश्चर्य कर्म किए। देखो, परमेश्वर अपने संदेशवाहक से बात करता है, संदेशवाहक साधारण लोगों से बात करता है, और तब वो बात जगह लेती है, जिसे आप देखें, वो उसे और साधारण लोगों को परमेश्वर में एक जैसे बनाए रखता है। आप देखना, पवित्र आत्मा उनके झुंड में से होते हुए बहता है। बहुत सी बार जब वे शहीद हुए थे, उन सेवक लोगों को ठीक उनके बीच में खड़ा किया गया इस तरह से, और उन सभी को एक ही समय में मार डालते, और उन लोगों के साथ क्या ही बुरा किया करते थे। उन्होंने उन्हें जला दिया। वे पुरुषों को लेते और उन्हें लकड़ी के साथ नीचे गाड़ देते, और जंगली कुत्तों को खोल देते, या और उन कुत्तों को उस मनुष्य की पीठ से लेकर खाने देते, उनकी आंतों तक को खींच लेते इससे पहले कि वह कभी मरता। स्त्रियों को लेते, उनके दाएं स्तन को काट देते और उन्हें वहाँ खड़ा कर देते जब तक उनके हृदय की धड़कन चालू रहती, और बस धड़कता रहता जब तक वे खत्म नहीं हो जाते। उस तरह की मृत्यु गर्भवती माताओं से उनके बच्चों को लेते और उन्हें सुअरों और इत्यादि को खिलाते, माताओं को खड़ा करके और इसे देखने देते, और सब तरह की बातें। अब आप सोचेंगे भी नहीं कि वे लोग मसीह होने का दावा करके ऐसा करते होंगे, लेकिन सुनना, बाइबल ने कहा, यीशु ने कहा, यह पूरा होगा कि वे तुम्हें मार डालेंगे, यह सोचकर कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आपको याद है वही यीशु जिसने ये कहा था, उसी आत्मा में से होते हुए इसे अंत समय में फिर से भविष्यवाणी की, इसे पूरा होना है। यदि ये दूसरी बातें वचन के साथ सिद्ध रूप से पूरी हुई हैं, ध्यान दें और देखें क्या ये वचन में से होते हुए और इतिहास के जरिए से ये बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं। परमेश्वर ने कहा कि ये बातें होंगी, यहाँ ये इतिहास इसे बताता है कि ऐसा घटित हुआ है। परमेश्वर ने कहा कि यहाँ ऐसा होगा, और यहाँ है जहाँ पर ये घटित हुआ है। देखो, बिल्कुल ठीक ठीक। फिर हम क्या करने जा रहे हैं जब हम लौदिकिया कलीसिया युग पर आते हैं? देखो हम कहाँ पर हैं, और विपत्तियाँ और बातें जिसे उसके विरोध में घोषित किया गया है। सो अब उसके बाद ये वो वहाँ पर प्रार्थना कर रहा था, जब उसके सभा के लोग इंतजार कर रहे थे, और वहाँ एक भिखारी दरवाजे पर आया और उसके दरवाजे पर खटखटाने लगा, और उसने दरवाजा खोला, और वह व्यस्त था, और उसने उससे कहा कि उसे एक वस्त्र चाहिए। वह नग्न था और उसके पास कुछ भी नहीं था, ये ठंड का मौसम था, और उसने कहा, उसने उसे पास के मुख्य डीकन को मिलने के लिए भेजा, और वो मुख्य डीकन उस पर चिड़चिड़ाने लगा और उसे बाहर निकाल दिया। और जब उसने ऐसा किया तो वह यहाँ वहाँ जाकर और फिर से वापस आकर, और उसने संत मार्टिन से कहा कि उस डीकन ने उसे बाहर निकाल दिया। और इसलिए तब उस समय पर यह मुख्य डीकन वापस आ गया और उसे कठोरता से कहा कि आपकी सभा के लोग आप पर रुके हुए हैं, आप उन्हें इंतजार करवा रहे हैं, लेकिन वह प्रार्थना में था। वह बेहतर होता कि प्रार्थना में बना रहे जब तक वो बाहर जाने के लिए परमेश्वर की अगुवाई को महसूस नहीं करता। और ये भिखारी वापस दरवाजे पर आता है, और संत मार्टिन अपने खुद के अच्छे वस्त्रों को उतार कर और भिखारी को देता है, और उस मुख्य डीकन के पास जाकर और दूसरे वस्त्रों को लेकर और उसके लिए लाने को कहता है। इसलिए कुछ भी हो, उसे एक वस्त्र को लाना ही था और इसे संत मार्टिन को देना था, और उसने अपने अच्छे वस्त्रों को पहनने की बजाय लोगों के सामने कम वस्त्र पहन कर रखे थे। देखें, ये बस यही दिखाता है, जो आपके पास सबसे अच्छा है उसे दे, अपने जीवन को दे, अपना समय दे, सब कुछ मसीह को दे। और वही आत्मा जो मसीह में रहती थी आप में रहती है, और जो आपका प्रभाव आपके आस पड़ोस में और आपके साथ व्यवहार करने वाले लोगों पर है, वो इतना मसीह के जैसा होगा, इतना तक कि ये उसी तरह से काम करेगा जो मसीह ने किया था। अतः यह बात पूरी हो जाएगी कि वे लोग परछाई में पड़े हुए थे और चंगे हुए थे। यह सही बात है, बस उनके आसपास इतनी अधिक प्रेम की सामर्थ होती है। और उन्होंने यह कहा कि जब संत मार्टिन प्रचार कर रहा था, उसके बाद जब वो बाहर आया, वो कम वस्त्रों को पहने हुए था, तो सारी सभा के लोगों ने उसके चारों ओर प्रकाश की एक चमक को देखा। देखा, देखो, क्योंकि उसने सही काम को किया था। हमेशा ही सही करें जो परमेश्वर के प्रति आपका कर्तव्य है। सही सोच को रखें, यह अपने आप के प्रति आपका कर्तव्य है, और आपको अच्छा बनकर सामने आना होगा। यह सही बात है, आपको बस ऐसा करना है। अब हम आज रात आरंभ करना चाहते हैं, ताकि आज रात इसे समझाने की कसौटी तक लेने का प्रयास करूं, क्योंकि यह यहाँ पर बहुत गहराई से व्यवहार कर रहा है। अब पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लेख कि जिसके पास चौकी दो तलवार दोधारी है, वह यह कहता है कि अब मैं आपसे चाहता हूं कि ध्यान दें कि वह आज रात फिर से अपने आप का परिचय दैविकता में दे रहा है। हर एक कलीसिया उसकी महिमामय अवस्था में से एक थी, वो एक जिसके पास 12 तारे थे, मेरा मतलब उसके हाथ में 7 तारे थे, वह जिसके पास दो धार वाली तलवार है। देखो कुछ तो और है, वह जिसके पीतल के पांव है, आंखें जो एक आग की ज्वाला है, वह अपने आप का वापस उसी जैविकता में परिचय दे रहा है। अब आप कहेंगे इसमें जैविकता कहाँ पर रखी है, वो दो धारी तलवार के साथ है, उसके मुंह से बाहर निकल रही है। तो ठीक है, तलवार वो वचन है। इब्रानियों 4 हमने इसे आरंभ में लिया था जब हम उसकी जैविकता को बता रहे थे। वो तलवार हम इब्रानियों 4:12 में पाते हैं, जो थी परमेश्वर का वचन, दो धारी तलवार से भी तेज था। क्या यह सही है? यह परमेश्वर का वचन था, क्या यह वही है? अब देखो, आप इन अनुवादों को पकड़ें, अब उस वचन को समझे। संत योहन्ना 1 आदि में बहुत पहले वो वचन था जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, क्या यह सही है? और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन दैविकता था, और वो दैविकता देहधारी हुई और हमारे बीच में रही, क्या यह सही है? वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और यहाँ पर वो खड़ा हुआ है, वो एक जो आदि में है, जो पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह कहे, उससे यह कहे, मैं परमेश्वर का वचन हूँ। ओह, हम उसे प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, उसके परिधान के साथ जो लहू में डूबा हुआ है, उसके सिर पर मुकुट है, सफेद घोड़े पर सवार है, और उसकी जांघ पर लिखा है परमेश्वर का वचन। ओह, मैं ये पसंद करता हूँ, वो वचन है, परमेश्वर का वचन। तो तब हम इस दैविकता को आरंभ में देखते हैं, स्वयं का परिचय देते हुए, वह वचन है। अब यदि वो जीवित वचन है, तब ये बाइबल पर जो लिखा हुआ है, यह उसका भाग है। तो यदि आप इसे ग्रहण कर सकते हैं, उसी में जो वचन है, यह वचन विश्वास के द्वारा आपके अंदर आता है, इसे जीवित बनाता है, क्योंकि ओह, इसे पकड़े, वो वचन आपके अंदर आता है। यदि पवित्र आत्मा वहाँ पर है, तो यह जीवित हो जाता है, जैसे ही ये अंदर आता है, और हर एक प्रतिज्ञा सच है, कुछ नहीं। इसलिए यदि तुम इस पहाड़ से कहो हट जा, और अपने हृदय में संदेह न करो, क्योंकि क्या आप वो बोलती हुई दैविकता है, आप इसे विश्वास करते हैं, बाइबल ऐसा कहता है, और जो कुछ भी आप कहते हो वो पूरा हो जाएगा, यदि आप संदेह न करें। यदि आप संसार की सभी बातों को आप में से बाहर निकाल सकते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको एक पूर्ण परमेश्वर के पुत्र या कन्या बनाता है। ना ही कोई संसार है, ना ही कोई दोष है, ना ही कोई संदेह है। तो फिर ये क्या है? यह अब आप नहीं है, यह आप में परमेश्वर है। तब आप उसका वचन लेते हैं, यह एक प्रतिज्ञा है, और कहते हैं पिता, यह आपकी प्रतिज्ञा है। शैतान, कुछ तो आगे होना है, देखा, समझे? अब आप इसे नहीं कर सकते हैं जब तक कि परमेश्वर आपको प्रकट नहीं करता है कि तब वो वास्तविकता क्या होनी चाहिए। देखा, फिर जब आप जानते हैं कि वह वास्तविकता क्या होनी चाहिए, तो आप यीशु के जैसे कह सकते हैं, वह वो वचन था, क्या ये सही है? और फिर भी यीशु, वो मनुष्य, वो भवन, उसने कहा, मैं कुछ नहीं करता जब तक पिता मुझे पहले नहीं दिखाता है। फिर यह उस वक्त तक वचन नहीं होता है जब तक कि आपके लिए प्रकट नहीं बन जाता। आपने इसे समझा? कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं चिन्ह चमत्कार के दिन बीत गए हैं, वचन उनके लिए प्रकट में नहीं आया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे पवित्र आत्मा में विश्वास नहीं करते, वचन उनके लिए प्रकटीकरण में नहीं आया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा के प्रकाशन को नहीं देख सकते हैं, वचन अभी तक उनके लिए प्रकटीकरण में नहीं आया है। और फिर भी उनके पास बताने के लिए एक भी वचन नहीं है। वचन में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां किसी को कभी भी किसी अन्य तरीके से बपतिस्मा दिया गया हो। पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल ने कहा, कोई भी मनुष्य यीशु को मसीह नहीं कह सकता है, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा। और फिर लोग कहते हैं कि वे विश्वास नहीं करते, पवित्र आत्मा सही है। देखा, देखिए, ये उनके लिए नहीं है। यीशु ने कहा, कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता है जब तक मेरा पिता उसे पहले न खींचे। और वे सब जो पिता के पास थे भूतकाल मुझे दिया है, वे मेरे पास आएंगे। ओह, क्या ये सुंदर नहीं है? उन सबको जिसे पिता ने मुझे दिया है वह मेरे पास आएंगे। उनमें से कोई भी नष्ट नहीं होगा विनाश के पुत्र को छोड़कर। और मैं वह उसी उद्देश्य के लिए जन्मा था, और मैं उसे अंतिम दिन में फिर से खड़ा करूंगा। ओ प्रभु, वहाँ जहाँ हमारे नामों को मेमने की किताब में डाला गया, दुनिया की नींव से लेकर, क्या ये सुंदर नहीं है? हम भला कैसे संदेह कर सकते हैं? हे परमेश्वर, हमारे बीच से संदेह को दूर कीजिए। बस हमारे दीन मानवीय हृदय का खतना करें, जब तक कि हम सबके बीच में कोई संदेह नहीं हो। यही मेरी प्रार्थना है। बस हर एक संदेह को दूर करें प्रभु। मैं मधुरता नम्रता पूर्वक जीऊं और धरती पर एक परमेश्वर के मेमने की नाई चलूं। मैं वैसे चलूं जैसे वो चला, मैं वैसे बोलूं जैसे वह बोलता है, मेरा उद्देश्य उसके उद्देश्यों की तरह हो। मुझे दूसरे लोग मुझ में यीशु को देखने दो, मैं अपने आप को खोकर और इसे देखूं। प्रभु, आप में ऐसा ही है, मैं बस अपने आप को खोकर और इसे आप में पाऊं। बस मसीह के अंदर इतना छिप जाऊं जब तक वहां संदेह के लिए कोई स्थान न हो, केवल वो जो कहता है। अब यहां से बाहर जाकर और मत कहना, परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, आपने देखा कि मैं क्या कर सकता हूं, परमेश्वर की महिमा हो, आपने इसे अभी तक नहीं पाया है, उसने इसे इस तरह से नहीं किया। नहीं, अपनी छाती को तानकर और कहा हो, देखा मैं क्या कर सकता हूँ, जी हाँ श्रीमान, मैं ऐसा ही नहीं। उसने किसी भी बात के लिए कभी भी अपनी बड़ाई को नहीं लिया, उसने परमेश्वर की बड़ाई की और नम्रता पूर्वक और मधुरता से चला। एक ऐसा वातावरण उसके आसपास होता था, यहाँ तक कि लोग उसके आसपास रहना पसंद करते थे, केवल उसके शत्रु। और उसने उन्हें इतना प्रेम किया, इतना तक वो उनके लिए लगातार हर समय प्रार्थना किया करता था। और वह आपके लिए उदाहरण था, मेरे लिए उदाहरण था, दूसरों के लिए करना जैसा कि उसने हमारे लिए किया। अब हम यहाँ फिर से ध्यान देना चाहते हैं, दूसरे पद में जो कि 13वां होगा, मैं तेरे कामों को जानता हूँ और कहाँ तू वास करता है, यहाँ तक कि शैतान का आसन और मेरे नाम पर स्थित रहता है, और ना ही मुझ पर विश्वास को अस्वीकार करने। देखो, वे वहाँ रह रहे हैं जहाँ शैतान का आसन है, और अभी भी वे यीशु के नाम को लेते रहते हैं। देखा, और मेरे विश्वास को अस्वीकार नहीं किया। उसने उन्हें किस तरह का विश्वास दिया है? पेंटिकॉस्टल विश्वास। आरंभ में उनके पास वहाँ एक निकलियों का विश्वास था, जो एक संगठित कलीसिया और इत्यादि है। वे एक कलीसिया को बना रहे थे जो संगठना के नीचे अस्तित्व में आ रही थी। लेकिन उसने कहा, तुम मुझसे दूर हो, तुमने इससे घृणा की, और वैसे ही मैं करता हूँ। और तुमने मेरे नाम को इनकार नहीं किया है, तुम उनके छोटे छोटे पुराने धर्म संप्रदाय और इत्यादि के पीछे नहीं गए, तुम ठीक सीधे मेरे नाम पर बने रहे, और तुम्हारे लिए अभी भी मेरा विश्वास है जैसा कि ये आरंभ में था। ओह, मैं इसे पसंद करता हूँ। और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा। मैं सोचता हूँ कि आप उसका ANTIPS अंतिपास उच्चारण करते हैं, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। मैं वहाँ बस एक मिनट के लिए रुकूंगा। शैतान का आसन, हम इन बातों पर एक तरह से अभ्यास करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझें, सुनिश्चित करें कि अब आप समझेंगे। शैतान आसन, अब परमेश्वर उत्पत्ति में घोषित करता है कहाँ पर शैतान का आसन था, और वह बाबुल में था। यह हमेशा ही शैतान का आसन रहा है, और प्रकाशित वाक्य में यह वही बात थी। लेकिन यदि आप ध्यान दें तो बाबुल अपने आप में पागान से पापल में बदल गया। और अब आरंभ के वर्षों में, या इससे पहले कि यह बात जगह ले, कुछ वर्ष शैतान के आसन ने एक बड़े, मैं सोचता हूँ कि आप उसे एक कजदी लोगों का राजा याजक कहते होंगे, बाबुल के याजक पद ने अपने आसन को बदल दिया जब फारसी उसके पीछे लगे हुए थे और उसने बाबुल को छोड़ दिया। उसका नाम ATTALUS एटालस था, जो बाबुल का बड़ा राजा याजक था। जब फारसी अंदर आ गए और बाबुल के ऊपर अधिकार किया, कसदियों को बाहर भगाया, एटालस जो उनका राजा याजक था भागकर और पिरगमुन में अपने आसन को ले लिया। शैतान का आसन है जहां तुम वास कर रहे हो, इसे समझे। अब यही कारण है कि मैंने पीछे जाकर कलीसिया के इतिहास से इस इतिहास को उठाया, जहां देखने के लिए कि क्या बात ने जगह ली थी। जब उसने कहा तुम वहां वास कर रहे हो जहां शैतान का आसन है, मैंने सोचा ठीक है, एक निश्चित चीज कहां पर हो सकती है, शैतान का आसन। तब मैंने जान लिया कि यह बड़ा राजा, जब वह फारसियों के द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद जिन्होंने अधिकार कर लिया उनसे भाग रहा था, दानियल के दर्शन के अनुसार वह रोम के पिरगमुन नगर में आ गया और वहां उसने अपना मुख्यालय बनाया। शैतान ने मुख्यालय स्थानांतरित किया बाबुल से पिरगमुन में, जहां भविष्य में वह नए बाबुल को आरंभ करेगा। ओ प्रभु, अब आपको वो बुनियाद मिल गई जहां पर हम हैं, तो ठीक है। अब वहां उसने इस बहुत ही अच्छे भाई को शहीद किया जो वहां शहीद हुआ, अंतिपास। उसके बाद अपनी तकनीक को बदलते हुए, पहले उसने मसीहों को सताया था। ओह, उसने किस तरह से मसीहत से घृणा की थी, और वह खुद एक राजा याजक था, स्वभाव और चाल चलन से मूर्ति पूजक। फिर उसने अपना रुख बदला और कॉन्स्टेंटाइन के साथ संगठित हो गया। कॉन्स्टेंटाइन को हमेशा ही जाना जाता रहा है और आज पापल के द्वारा जाना जाता है। कोलंबस के योद्धाओं का आरंभ, अब वो एक जिसने उस लवलुहान शपथ को किया था, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन, मैं इसे आदर और सम्मान के साथ बताऊंगा, इतिहास से निकालकर इसे मेरे अपने तरीके से पढ़ने के द्वारा बताऊंगा, ये कभी भी परिवर्तन नहीं हुआ था। अब उसने एक रात को एक स्वप्न देखा कि यदि वह, उसने एक क्रूस को देखा और कहा कि इसके द्वारा वह लड़ाई को जीत लेगा, और क्योंकि उसने मसीहों को मुक्ति देने का वादा किया था कि वो एक मसीही होगा यदि वे उस लड़ाई को जीतने के लिए उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं वहाँ पुल के पास खड़ा था कि जहाँ पर वो उनके पुल के दूसरी तरफ सो रहा था, इस सपने को देखा और वो जाग गया और उसके सभी योद्धाओं की ढाल पर एक सफेद क्रूस का चित्र बनाया, और वहाँ पर जहाँ कोलंबस के योद्धाओं को तैयार किया गया था जो रोमन कैथोलिक अधिकार के नीचे थे। लेकिन उसने कभी एक काम भी धर्म का नहीं किया, केवल एक ही चीज जो उसने कभी की थी उसने उसे इतिहास में लिखा था, जैसा कि मैंने कभी देखा है, वह था उसने संत सोफिया कलीसिया के ऊपर एक क्रूस को लगाया। लेकिन वह एक राजनीतिक व्यक्ति था, और जब वो उस समय पर रोम का शासक था तो उसने इस पागान के याजक से मिलकर संगठित हो गए। उस समय पर निकलियो नामक गुनगुनी कलीसिया में इसे लेकर आए, मसीहत जो एक याजक गण की ओर झुक रही थी और इसे उनकी कलीसिया में चाहते थे, जिसे हमने एफिसियस की कलीसिया के भविष्य के अध्ययनों और इत्यादि में बताया है, और स्मुरना के उन निकलियों पर। अब निकलियों जो बन गया था ना ही कुछ कार्य थे जैसे कि ये पहले यहाँ आरंभ में हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर यह एक शिक्षा है, यहाँ पर यह एक कार्य थे, वे इसे लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ तीसरे कलीसिया के युग में यह एक शिक्षा बन गई। महायाजक, बड़े बड़े लोग, उस समय तक उन्हें पोप नहीं कहा जाता था, अब लेकिन उन्हें बुलाया जाता है, जैसे मुख्य बिशप, महान लोग, आप जानते हैं प्रसिद्धि, और जो उनकी शिक्षाएं थी ये औपचारिक थे। वे आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने वाली कलीसिया से दूर हो रहे थे। उन्होंने उन लोगों की संख्या को घटा दिया और उन्हें विधर्मी कहकर बुलाने लगे, क्योंकि वे उनके साथ उन बड़े बड़े संप्रदायों में होने के लिए सहमत नहीं होते थे, लेकिन कलीसिया आजाद बने रहना चाहती थी उस धर्मीकरण के नीचे, पवित्र आत्मा की सामर्थ के नीचे, जैसे मसीह ने उन्हें प्रतिज्ञा की थी वह उनके साथ रहेगा और वह उनका राजा था। ओह, उनका राजा। सच्ची कलीसिया ने कभी भी अपने दृष्टिकोण को नहीं बदला, न ही किसी बोर्ड के द्वारा अपने ऊपर प्रभुता करने दिया। मैं नहीं जानता कि उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं, कार्डिनल्स और बिशप और पोप, वे जो कभी गलती नहीं करते ऐसा कहते हैं। हम विश्वास करते हैं कि वहाँ एक है जो कभी गलती को नहीं करता है, वो हमारा राजा है, वह यीशु मसीह है जो हमारे बीच में रहता है, हमारे साथ है, अब पवित्र आत्मा के रूप में है, परमेश्वर हम में है, हमारे बीच में रहता है, हमारी अगुवाई करते हुए और जीवन के जल की ओर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, खुद को ज्ञात करवाते हुए, दिखाते हुए, जैसे उसने उन आरंभ के संतों और शहीदों के बीच में किया था कि वो सृष्टि का प्रभु परमेश्वर था, बीमारों को चंगा करते हुए, मुर्दों को जिलाते हुए, दर्शन को दिखाते हुए, शैतानों को बाहर निकालते हुए। एक बार भी मैं कभी एक चीज की जानकारी को पा नहीं सकता हूँ उन सारे निकलियो कलीसिया के सारे बिशपों की जिसने रोम के याजक पद पोप को बनाया, न ही हमारे पास इतिहास में एक बार भी लिखित प्रमाण है कि उन बिशपों में से किसी ने भी मुर्दों को जिलाया हो या इसी तरह का कुछ भी किया हो, क्योंकि मसीह का पुनरुत्थान उनके हृदय में नहीं हुआ था। वे संगठित होकर और एक संप्रदाय में चले गए, अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बेच दिया, लेकिन जीवित परमेश्वर की कलीसिया में मसीह की सामर्थ थी। दूसरे कलीसिया में बड़ी बड़ी पदवी वाले लोग थे, लेकिन सच्ची कलीसिया आत्मा के साथ बनी रही। क्या आप समझ रहे हैं? तो ठीक है। अब यह तो कॉन्स्टेंटाइन अपने साम्राज्य को एक साथ जोड़ने के लिए यहाँ उसने क्या किया, उसने उन निकलियों को लिया और उनके पास गया जो मसीहत का एक गठन था। क्या आप इसे साफ साफ समझ रहे हैं? वे कहलाने वाले नाम के मसीह थे, मसीह होने का दावा कर रहे थे, बिना पवित्र आत्मा के थे। ओह, काश ये आपके हृदय के अंदर चला जाए, जिससे कि आप इसे कभी ना भूलें। समझे, ये मसीही लोग थे, सांप्रदायिक मसीही, वे बिना पवित्र आत्मा के थे। वे नाम के मसीही थे, वे एक साथ इकट्ठा होने के मसीही थे, उन्होंने प्रभु भोज को लिया और उन्होंने व्यवस्था को रखा, लेकिन पवित्र आत्मा के नेतृत्व को ठुकरा दिया। उनके पास कोई चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कार्य नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि वे चीजें भूतकाल में थी, कि उन्हें राज्य करने के लिए एक कलीसिया को स्थापित करना था। हम इसमें एक मिनट में देखेंगे यह किस प्रकार का राज्य है, समझे। अब तब पवित्र आत्मा की कलीसिया को अपने आप को ऐसी चीजों से दूर रखना था, लेकिन पिरगमुन में यह सब पिरगमुन कलीसिया के दूत को संबोधित किया गया था, समझे, क्योंकि इसे करना अब उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन को मसीहत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह उसके पागान के पूर्वजों को, उसकी पागान की कलीसिया को लाना चाहता था और लौट किया जो जड़ में चला गया था, और मेरा मतलब निकुलिया जो जड़ में चले गए थे और रोम में स्थापित हो गए थे और एक बहुत अधिक दिखावे को कर रहे थे, और बहुत से लोग मसीह विश्वासी थे जो कहलाने वाले नाम के मसीही थे, वे औपचारिक थे, और सच्ची कलीसिया कम संख्या में थी। ऐसा हमेशा था और हमेशा ही रहा है। मैं बस एक मिनट के लिए रुकूंगा, इसे वास्तव में आपके हृदय की गहराई में जाने दें, समझे। याद रखें, सच्ची कलीसिया हमेशा से ही छोटा मोटा झुंड रही है जिसे अन्य कलीसियाओं से बाहर रखा गया है। सच्ची कलीसिया कभी भी संगठित नहीं हुई थी, क्योंकि यह एक संगठित देह नहीं है। यह धरती पर रहती हुई यीशु मसीह की रहस्यमय देह है जो धरती पर रहती है। पवित्र आत्मा इन सदस्यों में चलता फिरता है, इसलिए आप मसीह को संगठित नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि अब आप इस पर बने रहें, अब उस लौदिकिया युग के लिए, और इसे याद रखें और इसे अपने पास रखें। मेरे द्वारा बोले जाने वाला हर एक शब्द इस टेप पर है, और अब याद रखें इसे मन में रखें, परमेश्वर की सच्ची कलीसिया कभी भी संगठित नहीं हुई थी। कैथोलिक कलीसिया पहला संगठन है जिसे संसार के द्वारा कभी जाना गया था। इससे पहले कभी कोई भी एक संगठन नहीं था, और यह वो माता कलीसिया है, जैसा कि कैथोलिक कहते हैं कि वो है। यह माता कलीसिया है जो संगठित कलीसियाओं की माता है। बाइबल कहती है कि वह थी, तो आप उस पर तर्क वितर्क नहीं कर सकते। जब वे कहते हैं कि वो माता कलीसिया है, तो यह माता कलीसिया है। यह प्रकाशित वाक्य 17 में चित्रित किया गया है, हम सीधे उससे लेने जा रहे हैं। तो ठीक है, अब इसलिए कॉन्स्टेंटाइन ने अपने मन में इस बात को रखते हुए कि अपने साम्राज्य को मजबूत करे, जैसा कि रोम ने हमेशा किया, संसार की चाबी अपने पास रखने के लिए उसे अपने पागान के विचारों को लाना था और मसीही के विचारों को भी लेना था, और किसी तरह से उन्हें एक साथ मिलाना था, ताकि इसे एक साथ जोड़ दे और खुद के लिए एक ऐसा साम्राज्य बनाए जो किसी से भी पीछे नहीं होगा। देखा, क्योंकि वो जो उसे अभी तक का संसार का सबसे महान साम्राज्य बना देगा, कॉन्स्टेंटाइन। और जहाँ तक मन परिवर्तन की बात है, वह एक राजनीतिज्ञ था, लेकिन न ही वो एक परमेश्वर का संत था, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों ने उसे संत बनाने की कोशिश की। वह संत नहीं था, न ही कभी एक भी ऐसी चीज उसने कभी की जो कि मुझे भी मसीहत के जैसे दिखाई दे। सो निकलोइयों की कलीसिया में से एक पर उसने एक क्रूस को लगाया था, और दूर दूर तक उसने कभी ऐसा कुछ जो कभी किया जो मसीह को दर्शाता हो, मैंने इसे कभी नहीं देखा, जब तक वह उस रात को उसने उनकी ढालों पर इस तरह से चित्रित किया था, क्योंकि उसने एक सपना देखा था कि मसीह लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, जिससे वह लड़ाई को जीत देता है। अब इसके बाद इससे उसका साम्राज्य मजबूत हो जाएगा, और फिर इसे करने के लिए उसने निकलियो मसीह कलीसिया के अंदर पागान सभा के रीति रिवाजों को लाया। मैं इसे औपचारिक संप्रदाय कहूंगा जो गठित हो रही थी। उसने इस निकलियो की कलीसिया में पागान के रीति रिवाजों को लाया, और वो कैथोलिक वाद का जन्म था। अब भाई, मैं इतिहास से हवाला दे रहा हूँ। मेरे हजारों कैथोलिक मित्र हैं, और वे बस उतने ही मित्र हैं जितने प्रोटेस्टेंट हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट शोर नहीं मचा सकते हैं। बस आज रात के पूरा होने तक इंतजार करें, देखना, समझे? आप देखेंगे कि उन्होंने उसी काम को किया है। मटका पतीली को चिकना नहीं कह सकता है, देखो, क्योंकि यह भी बस उसके जैसे ही है। उनके बीच में भी वही आत्मा पाई जाती है। और तब आप यह देखेंगे कि मैं हमेशा उस चीज पर क्यों दोष लगाता हूँ, क्योंकि यह गलत है। वही आत्मा मुझ में, यदि मैं करने की कोशिश करूँ, और मुझ में कुछ तो है जो चिल्ला उठता है, और मैं बस इस बात पर शांत नहीं बैठ सकता हूँ हमेशा ही। वे कहते हैं, बड़े बड़े लोगों ने, महान धर्म गुरुओं ने मुझे बताया, आप अपनी सेवकाई को बर्बाद कर देंगे। भाई ब्रैनम, आप ऐसे काम कर रहे हैं, कहा, जो कि आपका काम नहीं है। परमेश्वर ने आपको बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे बीमारों के लिए प्रार्थना करने से भी अधिक करने के लिए बुलाया है। बीमारी तो केवल एक चीज है जिससे मैं लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ, और ऐसा ही है। बीमारों के लिए प्रार्थना करना तो छोटी सी बात है। देखा, वो संदेश है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वे चीजें तो वापस चली जाती हैं। एक बीमार मनुष्य, एक बीमार व्यक्ति ठीक हो सकता है और फिर से मर सकता है, लेकिन एक मनुष्य जो परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है, उसके पास अनंत जीवन होता है। इसलिए परमेश्वर ऐसे ही बीमारों को चंगा करने के लिए यहाँ वहाँ नहीं जाता है। यह दान तो ठीक कलीसिया में स्थानीय देह के लिए होते हैं, जो एक पर, फिर दूसरे पर, और फिर दूसरे पर, फिर एक पर। देखा, ये दान बस कलीसिया के जरिए से होकर जाते हैं, लेकिन यह तो इससे कहीं अधिक बात है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे पकड़ लेंगे तो ठीक है। कैथोलिक वाद का जन्म इसे करने का जो कारण है, जिससे मसीहों की दृष्टिकोण को पकड़ें और पागान की दृष्टिकोण को भी पकड़ें, ताकि उन्हें एक साथ जोड़ें और एक कलीसिया को बनाएं। ओह, काश मेरे पास ठीक अभी वो एक कागज का टुकड़ा होता था जो एक रात को यहाँ पर रखा हुआ था। मैं इसे लाने वाला था और मैं इसे भूल गया। तो बहुत सी ऐसी चीजें वहाँ कमरे में रखी हुई हैं वे ठीक अभी भी उसी काम को कर रहे हैं और आपने इसे आरंभ किया जब आपने अंतिम व्यक्ति को चुना था जिसे आपने चुना। वे अब उस पर काम कर रहे हैं कि यहाँ तक एक ऐसी बाइबल को पालें जो न ही कैथोलिक न ही यहूदी न ही प्रोटेस्टेंट को चोट पहुँचाएगी। वे उनके लिए एक बाइबल को तैयार कर रहे हैं जो सारी चीजों को सही सही बैठाएंगी। क्या आप एक और कॉन्स्टेंटाइन की धूर्तपन को नहीं देख सकते हैं? इतिहास बस अपने आप को वापस दोहरा रहा है। अब आप देखें, और मेरे पास आपने मुझे एक रात को पढ़ते हुए सुना होगा, क्या आपने नहीं सुना? और मुझे ये घर पर लेटे हुए मिला और वे लंबे समय से इस पर काम कर रहे थे। अब वे कहते हैं 62 में वे, और ध्यान दें जो 22वां पोप जॉन आया उसने सारी छोटी छोटी पुत्री कलीसियाओं को माता कलीसिया के पास वापस घर आने के लिए कहा, चिंता मत करो वो आएंगी, वे आएंगे, वे वापस जा रही हैं, वे पहले से ही वापस आ गई हैं, उन्हें वापस नहीं जाना है, वे अब पहले से ही वहाँ पर हैं। जैसा मैं कह रहा था, इस देश ने कहा तो ठीक है, यदि श्रीमान कैनेडी चुने जाते हैं तो कैथोलिक इसे अधिकार कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे। उन्होंने तो बहुत पहले से ही इसे कर लिया है और आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। उनके शिक्षकों को कौन पैसा देता है उन्हें अपने स्कूलों में जाने के लिए ये चीजें कैसे मिलती हैं? और ठीक स्कूल में कैथोलिक बातों को सिखाना, और आप जो टैक्स का भुगतान करते हैं, ओह ठीक आपकी नाक के नीचे देखो इस तरह, ओ प्रभु उसने किस तरह काम किया। और बाइबल ने कहा कि वो इसे चापलूसी के द्वारा ले जाएगा और उसने ऐसा किया। देखो यह सही बात है, देखें बिना वजह टैक्स का भुगतान करते हैं। इसलिए ओ यह बहुत कुछ बोला जा सकता है, मुझे बस उन स्थानों से काटना होगा और फिर से इन बातों को लेने के लिए वापस जाना होगा। इस चीज को लेने के लिए ताकि काम को करे, कॉन्स्टेंटाइन ने पागान और मसीह लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कलीसिया के अंदर बहुत सारे सांसारिक मनोरंजन की तैयारी की। आप आत्मिक मन वाले हैं? क्या आप विचार को कर रहे हैं? क्या यह इस घड़ी का संदेश नहीं है? कलीसिया ठगबाजी के खेल को खेलते हैं, पार्टियां करते हैं, गाड़ियों को बांटते हैं और बस उन्हें एक साथ मिश्रित कर देते हैं, उस शक्ति को वापस एक साथ जोड़ते जाते हैं जब तक उन्हें एक प्रभावित स्थान नहीं मिल सकता है। ठीक यहाँ पर अब यही इतिहास है, किसी के पास तेज करने के लिए कोई कुल्हाड़ी नहीं है, वे तो बस वही हवाला देते हैं जो घटित हुआ। लेकिन उसने इसे किया सांसारिक मनोरंजन होने के द्वारा, कलीसिया को एक साथ जोड़ दिया ताकि निकोलियन कलीसिया को एक साथ लेकर आए। अब याद रखें, वह उस फिर से जन्म पाई हुई कलीसिया को नहीं छू सकते थे, नहीं श्रीमान, उनमें से किसी को नहीं, लेकिन औपचारिक निकोलियन कलीसिया इसके लिए विफल हो गई। और हमारे पास प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में क्या है? सूप भोज, मनोरंजन, स्केटिंग करना, ओ प्रभु, कटे हुए वस्त्र बिक्री करना और बाकी की हर एक चीज। देखें अब आप जानते हैं कि यह सच्चाई है, तो ठीक है। अब यदि यह परमेश्वर का वचन है तो मित्रों यह सच्चाई है और सारे प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं दोषी हैं, समझे? अब कभी भी परमेश्वर की योजना ऐसी नहीं थी कि तय खाने में सूप का भोज हो और नाचना हो और वहाँ जो कुछ भी चल रहा है वह पास्टर को भुगतान करना है और इत्यादि चीजें। यदि लोगों को केवल उनके दशवांश को देने के लिए सिखाया जाता है तो यह सब वहाँ पर हो जाएगा, यही परमेश्वर की योजना है। लेकिन परमेश्वर के पास एक योजना है, लेकिन मनुष्य अपनी खुद की योजना को बनाना चाहता है परमेश्वर की योजना के साथ मिश्रित करते हुए, तो ठीक है। अब ऐसा करने में उन्होंने संगठित कर दिया है और बना दिया, बाद में प्रारंभिक कैथोलिक कलीसिया का गठन किया। उसके बाद पहली बड़ी नीसिन परिषद में जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं बस अपने घुटनों पर गिर गया। उस बड़ी नीसिन परिषद ने एडी 325 में जगह ली थी, उन सभी को एक साथ लाया गया था, मसीह विश्वास के बिशप लोगों को और पिताओं को एक साथ नीसियन में लाया गया था। यही वो कारण है कि इसे एडी 325 में नीसियन परिषद कहा गया। और लगभग 1500 प्रतिनिधि उस सम्मेलन में या परिषद में आए, लगभग 1500 प्रतिनिधि और जनता संख्या से अधिक थी। बिशप एक के लिए 5 प्रतिनिधि मंडल में, लेकिन फिर भी निकोलियों के जरिए से जो ठंडे औपचारिक हैं और कॉन्स्टेंटाइन की राजनीतिक योजना के माध्यम से उन्होंने सच्ची कलीसिया को अधिक वोटों से हराया और जीत को हासिल किया, और उन्होंने मनुष्य के पवित्र आदेश और बिशपों के आदेश में इसे जारी किया, सभाओं से उस पवित्र आत्मा को बाहर करते हुए और इसके स्थान पर बिशप, कार्डिनल्स और पोप और इत्यादि को रखते हुए। ऐसा ही धूर्त खेल को उस डेमोक्रेट पार्टी ने इस अंतिम बात के लिए खेला था, अब यह सही है, अब हम नहीं, मैं और रिपब्लिक बस उसी तरह से गिरे हुए होंगे। लेकिन मैं एक चीज के बारे में बात कर रहा हूं, जिसे उन्होंने साबित किया एडगर हूवर कैलिफोर्निया में और बहुत से अन्य स्थानों में। उन्होंने ऐसी मतदान की मशीनों को रखा है जहां पर आपको श्रीमान निक्सन के लिए वोट करना था, आपको उसी समय पर कैनेडी को वोट करना होता था, उसके पास जीतने का मौका नहीं था। तो अब उन्होंने ये साबित किया है कि वे मशीनें गलत थी, तो फिर क्यों वे इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं? हम उस घड़ी में जी रहे हैं, ऐसा ही है, हम अंत समय पर हैं, वे इसे जानते हैं। उन्होंने साबित किया कि वे धोखेबाज थे और अब वे इस विषय पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो एक धोखे की बनावट थी और यहाँ पर उसका फिर से जन्म हुआ था, किसी एक मनुष्य को लाने के लिए, किसी एक शिक्षा को लाने के लिए, निकोलियों की शिक्षा जो कभी बस कुछ कार्य हुआ करते थे, अब यह एक शिक्षा बन गई है। अल स्मिथ के दिनों में यह कुछ कार्य हुआ करते थे, लेकिन अब यह एक शिक्षा बन गई है। अब ये यहाँ है, यह हम पर है। ओह, वह एक जिम डैडी को राष्ट्रपति बना देगा, मेरे मन में इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। निश्चय रूप से उस अगले कार्यकाल के लिए इतना तक वह इसमें जोड़ सकता है, इन पागान और औपचारिक मसीह लोगों को एक साथ जोड़ देता है। वे बाइबल पर काम कर रहे हैं ताकि इसे एक साथ लाने की कोशिश करें। वे पोप, कार्डिनल्स, इंग्लैंड के प्रधान बिशप, कैटरबरी के प्रधान बिशप से मैं मिला हूँ, मैंने उनसे हाथ मिलाया, मैंने खुद उनसे बात की, खुद से जब मैं इंग्लैंड में था। चुस्त पैंट पूरी तरह लगभग उसके एकदम कुल्हो पर थी और ओह, एक विचित्र कपड़े पहनने वाला व्यक्ति, लेकिन वो पोप से मिलने गया था। 100 वर्षों में वो पहली बार मिले। ये क्या है, हम अंतिम घड़ी में हैं। यही कारण है कि कहीं तो बाहर मंच पर खड़े होकर और प्रचार करने और बीमारों के लिए प्रार्थना करने की कोशिश करने के बजाय मैं आज रात यहाँ पर खड़ा हूँ, और मैं उन सभी लोगों से नहीं मिल सकता हूँ कि इन संदेशों को बार बार प्रचार करूँ, और यही कारण है कि हम इसे टेप पर ले रहे हैं और इसे संसार भर में भेज रहे हैं, उन्हें चेतावनी दी जा सके और विश्वास में वापस लाया जा सके। यहाँ तक कि मसीही युग के अंतिम समय पर यहूदा की किताब प्रकाशित वाक्य की किताब से पहली लिखी गई थी। संत यहूदा, जो यीशु का भाई माना जाता था, पालक भाई, उसने कहा, मैं चाहता हूँ उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। तब वे उससे दूर होने लगे थे प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद, और अब ये आज रात कितनी दूर है, देखो। अब ये पहला निसियन परिषद और ये एडी 325 में था। लगभग 1500 प्रतिनिधियों और बिशपों ने सभा की बैठक में भाग लिया, लेकिन उन्होंने उन्हें नामंजूर कर दिया। वे कुछ धुंधले क्रोधी परिषद में थे और उन्होंने उन्हें नामंजूर कर दिया और इसमें मतदान किया जिसमें निकोलियों ने कब्जा कर लिया था, और इससे सारे कलीसिया को हाथ में ले लेना था, और इसे पोप या बिशप या जो कुछ है और इसे देखरेख के नीचे में डाल देना था, कलीसिया से सामर्थ को लेकर और इसे बिशपों को सौंपते हुए, जिससे कि बिशप कलीसिया पर राज्य को करे और केवल उस एक ही के पास ही इसके बारे में कुछ भी कहने का अधिकार था। क्या आपने आज कैथोलिक कलीसिया में ध्यान दिया? कहते हैं आप उस बाइबल को नहीं पढ़ सकते, ये आपके अनुवाद करने के लिए नहीं है, ये बिशप के लिए है। देखो ये कहाँ से आया है। अब आप देख सकते हैं कि निकोलियन वास्तव में क्या था। इससे पहले ये चूचू करना और रेंगना आरंभ करे, इसने ठीक वहीं पर जन्म लिया था। यह सही बात है, और यह मसीहत के एक भेष में था जो अभी भी है। और तब ठीक इसके बाद प्रोटेस्टेंट उसी प्रकार के हैं। बाइबल के प्रकाशित वाक्य 17 में कहा, माता और पुत्रियां, प्रभु ने चाहा तो हम इसे थोड़ी देर के बाद ले लेंगे। अब आप ध्यान दें कि यह आज भी वैसा ही है, उन्होंने इसे अधिकार कर लिया है। अब कॉन्स्टेंटाइन ने बिलाम की नीतियों का इस्तेमाल किया। अब मैं चाहता हूं कि आप जितना हो सके उतना नजदीक से समझने की कोशिश करें। अब उसने यहां बाइबल में कहा, मेरे विश्वास को दृढ़ता से थामे रहो। अब मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं, ना ही यहाँ लेकिन वहाँ। तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं, तेरे यहाँ कितने पिरगमुन की कलीसिया में, देखो, जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि मूर्तों के बलिदान खाए और वे विचार करे। अब कॉन्स्टेंटाइन ने उसी नीतियों का उपयोग किया जिसे बिलाम ने किया था। उन्होंने एक बैठक की यहाँ इस परिषद की बैठक के बाद, जिसमें बिशपों को कलीसिया के ऊपर रखा गया था और इत्यादि, इस पर राज्य करने के लिए और सारे साधारण जनता की शक्ति को प्राप्त करे, और उन्हें खुद के बारे में कोई विचार नहीं करना था, न ही उनके पास कोई भी अनुवाद करने का अधिकार था, और यह सब याजकों के लिए था जिन्हें वचन का अनुवाद करना था। अंत में कुछ समय बाद वे एक मुखिया याजक बनाते हैं और वे उस एक प्रधान को जो कि पोप था, लेकिन अब वे उस स्थान पर आ गए हैं जहां वे इसे रखते हैं। सारी समझ याजक से संबंध रखती है और सभा के लोगों को बाइबल को नहीं पढ़ना है, उन्हें कुछ भी नहीं करना है। खुले रूप से वे बाइबल को उनसे दूर रखा गया है और अब उन्होंने इसका अधिकार अपने खुद के ऊपर ले लिया है, और यह हमारे लिए वोट दिया गया था क्योंकि यह अच्छा लगा, यह अच्छा दिखाई दिया क्योंकि वे धनी थे और इत्यादि। और उन्होंने दिया इस बड़ी बैठक में, जब उसने एक साथ बुलाया, कॉन्स्टेंटाइन ने बिशप को अच्छी इमारतें दी, उसे कुछ पैसों पर अधिकार दिया गया, और इन बड़े बड़े स्थानों पर के बड़े जैसे इमारतें उन्होंने इसे भी कलीसिया को दे दिया कि वे उन्हें कलीसिया के भवनों के नाई इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, वे अच्छी इमारतें थी, सारी सुसज्जित और इत्यादि, सो उसने उन्हें कलीसिया के लिए दे दिया। इसके अलावा उसने इन बिशपों को सुसज्जित किया बड़े लंबे वस्त्रों से और नीचे के कपड़े और वे चीजें जो उनके अंदर पहनते हैं, और इसके अलावा उसने उन्हें ऊपर रखा या इस तरह के एक ऊंचे स्थान को बनाया और उन्हें वहां ऊपर रख दिया एक मूर्ति की तरह, और वहां उनके नीचे उसने संगमरमर की वेदी बनाई उनके नीचे, और उसने इस सब को परिवर्तित कर दिया, पागान के विचारों को लिया और अपने मसीहत को इसके अंदर लाया अपने बिशप को लेते हुए। देखो, उन्होंने मूर्ति को नीचे उतारकर और बिशप को ऊपर रख दिया, देखो उसे एक वेदी बना दिया वही चीज, और उसे एक परमेश्वर बनाया बिशप को ऊपर रखते हुए, और उसके पास बोलने के लिए सब था, उसे पूरी तरह से सुसज्जित किया और उसे एक परमेश्वर की तरह बना दिया। उसे अपने पागान के देवताओं की तरह रखने की बजाय उन्होंने उसे एक वस्त्र को पहना दिया जैसे यीशु पहनता था, देखा, और उन्होंने उसे ऐसा बनाया जैसे एक मूर्ति वहाँ बैठी हुई हो। ओह, आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे पागान ने कहा, अच्छी बात है, मैं उस बात के लिए आगे बढ़ सकता हूँ, वहाँ कोई तो हमसे वापस बात कर सकता है, हम एक मूर्ति से बात करते आ रहे थे, लेकिन यह मनुष्य हमसे वापस बात तो कर सकता है। मसीह लोगों ने किस तरह से सोचा, ठीक है, ये अच्छा होगा, अब हम कुछ भी कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, क्योंकि वहाँ हमारा परमेश्वर है, हम उससे बात कर सकते हैं, वह हमें वापस बता सकता है कि क्या करना है। यदि हम पाप करते हैं, हम उसे इसके बारे में बताते हैं, उसे थोड़ा कुछ देते हैं और एक छोटा कुछ, एक छोटे से माला को फिराते हैं या कुछ तो, और पहली चीज जिसे आप जानते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं और बाहर वापस जाकर और फिर से आजादी को महसूस करते हैं, किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओह, यह अच्छा दिखाई देता है, निश्चय ही यह अब भी सांसारिक दिमाग के लिए अच्छा लगता है, लेकिन इससे आप परमेश्वर के एक फिर से जन्मे संतान को कभी भी नीचे नहीं गिरा सकेंगे। वे इसे कर पाने में कभी भी सक्षम नहीं हुए हैं, क्योंकि वह जानता है कि उसने जिस पर विश्वास किया है और मानता है कि वो उसे बनाए रखने में सक्षम है जो उसे उस दिन के निमित्त सौंपा गया है, और उन बातों को भूलते हुए जो पहले बीत चुकी है, हम मसीह में ऊंची बुलावट के निशाने की ओर खींचे चले जा रहे हैं। आमीन। ओह, मैं कितना धन्यवादित हूँ। उसके नीचे संगमरमर की वेदी होती है, यहाँ ऊपर बैठा हुआ होता है वास्तविक कपड़ों को पहने हुए एक बढ़िया कलीसिया, ओह प्रभु वे सब वहाँ तैयार हो चुके हैं, तो ठीक है। और यह वेदी वहाँ ऊपर रखी हुई थी, एक सुंदर संगमरमर की वेदी थी, आपको अभी भी देखना चाहिए। ये उसी तरह से है, सोने से लदी हुई, और ये वेदी रत्नों के साथ जड़ी हुई है। इस वेदी पर मणि लगी हुई है, सुंदर वही बनावट जो निकलियों के लिए और पागान के लिए की गई थी। देखा उसने क्या किया, उसने पागान के रीति रिवाज को लिया, पागान के विचारों को और मसीहत को लिया, जो औपचारिक रूप से ठंडे हैं, जो बेहतर नहीं जानते थे, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था ताकि फर्क बताने की और अगुवाई करें, और उन्हें यहाँ धरती पर एक देवता बनाया और उनके लिए एक वेदी को बनाया और उनके पापों को क्षमा करने के लिए एक देवता को वहाँ पर बैठा दिया। क्या आप आत्मिक हैं? क्या आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है? देखो ये क्या है, धरती पर एक पाप को क्षमा कर रहा है। मैं इसे अपने दिमाग से हवाला नहीं दे रहा हूँ, यह तो इतिहास है। आपको पवित्र इतिहास का एक एक पन्ना और संख्या देता हूँ। ठीक उसी तरह से ही मैं आपको जॉर्ज वॉशिंगटन और अब्राहम लिंकन और गेटिसबर्ग की लड़ाई और इत्यादि के लिए बता सकता हूँ। निश्चय ही वो सारी बातें इतिहास में है जिसका मैं यहाँ पर हवाला दे रहा हूँ। और फिर यह बहुत सही बैठता है, न ही इस फिर से जन्म पाई हुई कलीसिया के लिए, नहीं श्रीमान। तो ठीक है, जब वे एक मनुष्य को अब वहाँ ऊपर रखते हैं, एक मुख्य बिशप बनाने के लिए, रीति रिवाज को दोहराने के लिए, निश्चित रूप से संपूर्ण सुसमाचार को इसमें से बाहर कर देते हैं। ये आज भी ऐसा ही करते हैं। वे युग बस यूं ही आगे बढ़ते गए, बस बदलते रहे। देखो एक अलग रूप में, एक अलग दिन में, ओह जब उन्होंने परमेश्वर की तरह उस एक बड़े दर्जे के मनुष्य को ऊपर रखा और उसे कुछ रीति रिवाज को कहना होता था। और ध्यान दें कि पगानों ने अपने मृत पूर्वजों के लिए प्रार्थना की, और एक प्रोटेस्टेंट कलीसिया जो खड़े होकर कहते हैं मैं पवित्र रोमन कैथोलिक कलीसिया और संतों के प्रभु बोझ में विश्वास करता हूँ, तुम मेथोडिस्ट प्रेस्बिटेरियन और लूथरन अपना मुंह छिपाते हो। कुछ भी मृतकों के साथ बिचवाई करता है वह आत्मिकता है, निश्चय ही। लेकिन अब प्रोटेस्टेंट कैथोलिक पर हंस नहीं सकते हैं, वो भी उसी काम को करते हैं, इसे पूरी तरह से अंगीकार करते हैं कि वह उसी चीज पर विश्वास करते हैं। ठीक पहले के कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मे को लेते हैं, उनके जल के बपतिस्मे के द्वारा अस्वीकार करते हुए और लोगों का मजाक उड़ाते हुए जो सही तरह से जीने की कोशिश करते हैं, एक कलीसिया में जाते हैं और लोगों को परमेश्वर की सामर्थ के नीचे चिल्लाते हुए देखते हैं और बाहर खड़े होकर इसका मजाक उड़ाते हैं, ऐसा सब करते हैं। देखो आत्माएं मरती नहीं, लोग मरते हैं, लेकिन आत्माएं नहीं मरती हैं, समझे। वो पवित्र आत्मा यह मर नहीं सकता है, वो यीशु पर था, अब यह उसकी कलीसिया में है, हमेशा ही रहेगा जब तक वो उसकी कलीसिया के लिए नहीं आ जाता, क्योंकि ये उसका एक भाग है, समझे। भले ही वे सताने वाले, उन्होंने उनका वहाँ पहले उन दिनों में मजाक उड़ाया हो, वे आज अभी भी यहाँ जीवित हैं। परमेश्वर अपने मनुष्य को ले लेता है लेकिन अपनी आत्मा को धरती पर से नहीं उठाता है। शैतान अपने मनुष्य को ले लेता है लेकिन कभी भी आत्मा को धरती पर से नहीं लेता है। जिन याजकों ने यीशु की मृत्यु को अनुमति दी, जिन्होंने कहा कि वह एक भविष्य बताने वाला या शैतान था, वे लोग वैसे ही धार्मिक थे जैसे सारे धार्मिक लोग हो सकते हैं, ये सही बात है। वे उस वचन का शब्द दर शब्द जानते थे लेकिन वे इसका सही अनुवाद नहीं जानते थे, उनके पास अपने विचार थे और वे कुछ भी और नहीं सुनना चाहते थे। और फिर उन्होंने उसे देखा और जानते वे भला यह देखने में कैसे चूक सकते हैं कि क्या यीशु ने उस हरेक बात पर योग्य नहीं ठहरा जो हरेक भविष्यवक्ता उसके बारे में कही गई थी, लेकिन वे अंधे थे और परमेश्वर ने कहा कि उसने एक उद्देश्य के लिए उनकी आंखों को अंधा कर दिया जिससे कि हमें उद्धार पाने का मौका मिल सके। अब बाइबल ने फिर से भविष्यवाणी की कि वो कि हम इस पेंटिकॉस्टल युग में हैं जो नंगा अभागा अंधा है और इसे नहीं जानता है। वहाँ कलीसिया की ऐसी परिस्थिति है, फिलाडेल्फिया, ओ तुम जो औपचारिक बैप्टिस्ट प्रेस्बिटेरियन और पेंटिकॉस्टल हो, देखो आप वहीं पर हैं। कभी कभी मेरा अर्थ आपसे नहीं होता है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरा एक टेप बन रहा है, आप देखना, और मैं जानता हूँ कि यह टेप कहाँ कहाँ पर जाता है, समझे। पश्चाताप करो, बाइबल की ओर वापस फिरें, मसीह की ओर वापस जाएं, तो ठीक है। लेकिन इसी बात ने जगह ली है, संपूर्ण सुसमाचार को बाहर निकाल दिया गया था, कलीसिया में से चिन्ह और चमत्कार दूर चले गए थे, और जब पवित्र आत्मा के झुंड को अन्य कलीसिया के बीच से बाहर निकाला गया था, तब उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसा कोई दिन भी था, और यह उस समय पर था, और वे आज भी उसी काम को करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या आप इसकी आत्मा को नहीं देख सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, आरंभ में अपनी आत्मिक सोच को चालू रखें। परमेश्वर आपके हृदय को खोलने दो। पक्षपाती मत बनो। बैठकर और ध्यान से सुने। कहें, पवित्र आत्मा मुझे प्रकट करे, मैं इसे देखता हूँ। ये यहाँ पर है। रीति रिवाज कहाँ पर? बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, या तक कि पेंटिकॉस्टल, बस एक धार्मिक रीति रिवाज बन गए हैं। केवल एक ही चीज जो वे करते हैं, एक पियानो को बजाते हैं, कुछ तो या कुछ और, थोड़ी देर ऊपर नीचे कूदते रहते हैं, और जैसे ही पियानो बंद हो जाता है, खत्म। बाहर जाकर धोखा देना, चोरी करना, झूठ बोलना, बाकी सब कुछ करते हैं, लेकिन असल में और इतना अधिक गुस्सा होता है कि तुरंत ही लड़ने लगते हैं। हर किसी के बारे में बात करना और हर एक चीज को करना। देखा, आप यहाँ पर हैं, ना ही केवल पैथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कैथोलिक, लेकिन यहाँ लौकिया युग में पेंटिकॉस्टल कलीसिया। ओह, क्यों आप उस पर वापस नहीं आते हैं जो आपके पूर्व पिताओं के पास था? हम क्यों सच्चे पेंटिकॉस्ट पर वापस नहीं आते हैं जो पवित्र हैं और पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो मसीह को हमारे पास लाते हैं? हमें इसी की आवश्यकता है। तो ठीक है, अब आज ऐसा ही है। अब पिरगमुन शब्द का अर्थ होता है विवाहित। उसी शब्द पिरगमुन का अर्थ होता है विवाहित।
क्रिश्चियनिटी, दैट इज द निकोलेडियन साइड, द फॉर्मल साइड, मैरिड टू द
मसीहत, जो निकोलियों की ओर है, औपचारिकता की ओर है, उसी अवस्था में विवाह किया, पागान के रीति रिवाजों के साथ, पागान के रीति रिवाज, और यह उस दिन कैथोलिक कलीसिया का जन्म हुआ था। अब हर कोई जानता है कि कैथोलिक कलीसिया को निसियन परिषद में अस्तित्व में लाया गया था। इससे पहले इसे परमेश्वर के द्वारा एक निकोलियन कहा जाता था, जिसका अर्थ है निकु, निकु, विजय को प्राप्त करना, जीतना, या साधारण जनता का तख्ता पलट करना। और जब उन्होंने ऐसा किया तो वे लोगों के बीच उस आत्मा को नहीं चाहते थे, और वे पास्टर, जिसका अर्थ होता है चरवाहे, पवित्र आत्मा को। आप कहते हैं, क्यों याजक एक चरवाहा नहीं हो सकता? वह आपको किस तरह का भोजन खिला रहा है? क्या आपको वही परिणाम मिल रहे हैं जो उनके पास पेंटिकॉस्ट के दिन में थे? निश्चय ही नहीं। मरियम तेरी जय हो, किसी को भी ऐसा पेंटिकॉस्ट में देखा है? माला फेरना या सब पानी का छिड़काव, पानी उंडेलना, एक त्रिएकता परमेश्वर का उपयोग करना जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, आपको ऐसा पेंटिकॉस्ट पर किसी भी समय कहीं पर मिला है? यीशु ने कहा, इज़राइल का घर विश्वास पूर्वक जाना जाए। परमेश्वर ने उसी यीशु को बनाया जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु और मसीह दोनों को। यह सही बात है। हमें ऐसी चीजें कहाँ पर से मिली? यह एक निकोलियन से आरंभ होकर और कैथोलिक वाद में घटित हुआ था। अब आप कहते हैं, अच्छा, मुझे यकीन है कि मैं खुश हूँ क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ। अब बस ज्यादा निश्चित भी न हो जाए, समझे? अब याद रखें, मसीहत, निकोलियन। अब क्या आपको कहानी समझ गई? अब ध्यान से सुने, इससे पहले हम आगे जाएं, मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझ लें, यदि हमें आधी रात तक यहाँ रुकना पड़े तो हूँ, क्योंकि भाई, ये आपका प्राण है। आप कह सकते हैं, ठीक है, मैं फलाना से संबंध रखता हूँ, यह ऐसा नहीं है। यदि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है तो भाई, मैं परवाह नहीं करता हूँ कि आप कितनी कलीसिया से संबंध रखते हो, आप नष्ट हो जाते हैं। यदि आप परमेश्वर की आत्मा से फिर से नहीं जन्मे हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा नहीं जन्मे हैं, आप नष्ट हुए हैं, क्योंकि आपके पास अनंत जीवन नहीं है, और अनंत जीवन एकमात्र ऐसी चीज है जिसे परमेश्वर जिलाएगा, क्योंकि केवल यही एकमात्र जीवन है जो बचता है। यदि मकई का एक दाना, जैसा कि मैंने यहाँ हवाला दिया है, खेती बाड़ी के समय पर, कितने लोगों को पुराने भाई स्पर्जन याद है, जो वहाँ पर हेनरीविल में मेथोडिस्ट प्रचारक हैं, एक पुराने अद्भुत चरित्र के व्यक्ति। हम एक दिन रेड फर्निश पर आइसक्रीम के फवारे में बैठे हुए आइसक्रीम को खा रहे थे, और हम एक सभा के बारे में बात कर रहे थे जिसे मैंने वहाँ पर की थी, और खेती बाड़ी का समय चालू था, और रेड ने थोड़ा सा स्पीकर चालू किया था और अपने रेडियो को वहाँ बाहर रखा था, और कहीं से तो कोई बोल रहे थे, अवश्य ही संदेश लुइसविले से आ रहा था, लेकिन चार एच क्लब के पास एक ऐसी मशीन थी जो मशीन के दाने को तैयार कर सकती थी, जिसे वे कैल्शियम और पेट्रोलिज्म और सब कुछ मकई में डाल सकते हैं और इसे बिल्कुल वैसा ही बना सकते हैं जैसा कि यह बनाता है। ये 4H के पास थी। विज्ञान ने इसे साबित किया था कि मकई दाना इतना वास्तविक दिखाई देता था कि आप एक मुट्ठी भर मकई बोरी से निकालकर खेत में उगा सकते हैं और मुट्ठी भर बोरी से ले और दाना मशीन में तैयार हुआ था और ये यहाँ पर जिसे मशीन से तैयार किया गया है ये उसी प्रकार के मकई के लच्छे को मक्के की रोटी को बनाएगा। और असल में आप उन्हें प्रयोगशाला में ले जा सकते हैं और उसके कुछ हिस्से को काटें उस दाने के और आप उस एक के टुकड़े को लें उस दूसरे के टुकड़े को लें फर्क नहीं बता सकते हैं। उसमें पेट्रोलियम की मात्रा एक समान थी वही कैल्शियम की मात्रा और नमी जो कुछ भी उस दाने में गया है यह दूसरे दाने में भी था। उसने कहा इसे जानने का एकमात्र निश्चित तरीका है कि वो जो भूमि में विकसित हुआ दाना था और जो एक मशीन के द्वारा बनाया गया दाना था दोनों को मुट्ठी भर लेकर दफना दें और वे दोनों सड़ जाते हैं और जो मशीन के द्वारा तैयार किया गया था वह फिर से ऊपर नहीं आएगा लेकिन जो परमेश्वर ने विकसित किया था वो फिर से जीवंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह अंकुरित नहीं हुआ था। और आप हो सकता है एक मसीह के जैसे दिखाई देते हो एक मसीही का व्यवहार करें और हर एक अच्छे काम को करें जो आप कर सकते हैं और अपने कलीसिया के प्रति वफादार रहें लेकिन जब तक आप पवित्र आत्मा से अंकुरित नहीं होते मसीह का जीवन अनंत जीवन आप में आता है न ही अंगीकार करने के द्वारा लेकिन पवित्र आत्मा के एक दान के द्वारा। आपको ये कैसे मिलता है? पेंटिकॉस्ट के दिन डॉक्टर ने कहा जिसने दवाई के पर्चे को लिखा पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम में तुम में से हर एक जन बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा के दान को पाओगे। पवित्र आत्मा का दान जो अनंत जीवन है केवल यही वो एक चीज है जिसे परमेश्वर ऊपर लेकर आएगा। ये केवल एक चीज है जिसके पास जीवन है जिसे वो जिला सकता है। देखा केवल यही एक चीज है जो आगे बढ़ सकती है। मैं आशा करता हूँ कि यह स्पष्ट है। परमेश्वर प्रदान करे कि यह स्पष्ट हो जाए। अब निकोलियन के पास औपचारिक गुट था और उन्होंने पागान कलीसिया से विवाह किया। पागान की वेदियों में लाते हुए मसीह की वेदी बनाते हुए एक पागान के देवता को अंदर लाया और इसे बोलने और बात करने वाला बनाया। एक बिशप के रूप में वहाँ पर बैठा दिया इसे वस्त्र पहना दिया और इसे ऐसा बनाया जैसे एक देवता की तरह दिखे। आपने देखा ये ऐसा नहीं है ये बाहर से क्या है ये तो ऐसा है जो अंदर होता है। वे मकई के दो दाने एक समान दिखते हैं ये इस तरह से नहीं है कि बाहर की तरफ क्या है यह तो वो है जो अंदर की तरफ था। अंदर उस जीवन को देखें तो ठीक है इसे वहाँ बनाया गया था और यह आरंभिक कैथोलिक कलीसिया का जन्म स्थान था वो सारे कलीसिया संप्रदायों की माता थी। अब आप कहते हैं तो ठीक है मैं भाई ब्रैनम जहाँ तक तो मैं कैथोलिक नहीं हूँ। अब बस एक मिनट आइए यहाँ बस बीच में कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं और आइए हम प्रकाशित वाक्य 17 को अब खोलेंगे बस एक मिनट के लिए। अब सीधे उसी की ओर जाएंगे। अब यह किसका प्रकाशन है? यीशु मसीह का जो उसकी कलीसियाओं के लिए है। जैसा मैं पढ़ता हूँ ध्यान से सुने। और जिन 7 सरदूतों के पास वे 7 कटोरे थे उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा कि इधर आ मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से जल पर बैठी है। अब सो मेरे पास एक गवाह हो सकता है। कितने लोग जानते हैं कि बाइबल में एक महिला को हर बार इसे प्रतीक में बताया गया है जिसका मतलब होता है कलीसिया। तो ठीक है कितने लोग जानते हैं कि वो बड़ी वेश्या ठीक यहाँ इसी अध्याय में वो नगर जो 7 पहाड़ियों पर बसा है। तो ठीक है और अब कितने लोग जानते हैं कि बाइबल ने कहा बहुत से जल यहाँ वो बहुत से जल पर बैठी हुई है। जल नहीं लेकिन बहुत से जल और जल का अर्थ होता है लोग क्योंकि 15वें अध्याय को लें आप यहाँ देख सकते हैं। देखो 15वां पद देखना फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिस पर वेश्या बैठी है वे लोग और भीड़ और जातियाँ और भाषा है। देखा समझे। अब यह स्त्री एक स्वधर्म त्यागी थी क्या वो नहीं थी? अब यह शिक्षा है इसलिए अब आपको अपने विवेक को अपने पीछे रखना अवश्य है समझे। वो क्या है जो उस बुरी स्त्री को वेश्या कहकर बुलाता है? यह एक ऐसी स्त्री है जो अपने विवाह के प्रतिज्ञा के प्रति वफादार नहीं है। अब कलीसिया कैथोलिक कलीसिया दुल्हन और मसीह की पत्नी होने का दावा करती है यहाँ तक कि नन अपने बालों को कटवा लेती है और उनका कोई लगाव नहीं होता है उनका सारा लगाव मसीह के प्रति होता है। क्या ये सही है? निश्चय ही या कोई भी मैं कैथोलिक अनुभव से आया हूँ। देखो, मेरे पास उनकी किताब, हमारे विश्वास के सत्य वर्णन और उनकी और किताबें हैं, और आपके प्रोटेस्टेंट्स और बैप्टिस्ट और आप जो कुछ भी विश्वास करते हैं वहाँ मैंने अध्ययन किया है, इसलिए मैं इसे अध्ययन करता हूँ। यदि कोई भी कुछ भी कहता है, जरा रुको, मैं आपको आपके कहने के अनुसार वापस बता सकता हूँ, समझे? इसलिए इसके बाहर जाने का समय आ चुका है। अब पहली बात, परमेश्वर को सारे राष्ट्र भर में आगे बढ़ना था, चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कार्यों को दिखाते हुए, जिससे कि लोग जान जाएं परमेश्वर की भेड़ें उसकी आवाज को जानती हैं। वे जानते हैं, वे ठीक ठीक जानती हैं। आपको पहले पता लगाना होगा। आप बिना जाने ही बाहर निकल जाते हैं, फिर आप बस आप क्या करते हैं, आप उन्हें पहले से भी ज्यादा हानि पहुँचाते हैं। आओ, आप इसकी चिंता परमेश्वर पर छोड़ दें, समझे? मैं तुम्हें उस बड़ी वेश्या के न्याय को दिखाऊंगा। अब यदि वो वही थी तो वह एक स्त्री थी जो कुछ तो होने का दावा कर रही थी। वह व्यभिचार कर रही थी, क्या यह सही है? ठीक है, तब यदि यह एक कलीसिया थी तो वह परमेश्वर के विरोध में व्यभिचार कर रही थी, क्या यह सही है? तब व्यभिचार अनैतिक संबंध होगा, जो आत्मिक अनैतिक संबंध है। वह लोगों को कुछ तो सिखा रही है कि यह परमेश्वर का वचन नहीं है, क्या यह सही है? वह कुछ तो ऐसा सिखा रही है कि जो सच नहीं है, यह निकोलियन है। क्या इसे यह आते हुए देखते हैं जो उन पोप और याजकों को रखते हैं और पवित्र आत्मा को बाहर निकाल रहे हैं? अद्भुत कार्य के दिन बीत गए हैं और बाइबल ने कहा यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। बाइबल ने कहा पश्चाताप करो और अपने पापों की क्षमा के लिए तुम में से हर एक जन यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। वह कहती है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, जल का छिड़काव, यहाँ वहाँ उंडेलना, ओ प्रभु। देखा तो ठीक है, देखो कि यह स्त्री क्या कर रही थी। पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं। नशा करना आपको मार डालता है, आपको मौत दे देगा, आपको नष्ट कर देगा या कुछ भी और। भाई, वे उस चीजों से पूरी तरह से नशे में है, समझे? वो मदिरा, यही है वो जो वो दे रही है। देखो उसके व्यभिचार की मदिरा को, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। मेरी माता कैथोलिक थी और मैं तो ठीक है, अब आप कहते हैं ये भयानक है। अब बस एक मिनट रुकना, प्रोटेस्टेंट, मैं इन टेपों के लिए बोल रहा हूँ। देखो, तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर एक स्त्री को बैठे हुए देखा। अब शब्द किरमिजी से क्या पता चलता है? यह राज्य अधिकार को बताता है, मतलब मेरा मतलब है, मतलब शाही, शाही राज्य, देखो और इत्यादि के जैसे, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, सात सिर और दस सिंह वाले। अब सात सिर सात पहाड़ है जिन पर नगर बसता है और ये स्त्री नगर है, हम जानते हैं। यह स्त्री बैंगनी कपड़े पहने थी, वो स्त्री, वो पशु किरमिजी रंग का था, लेकिन स्त्री बैंगनी कपड़े पहने हुई थी। अब क्या मैंने आपको एक दिन चेतावनी नहीं दी? वहाँ तीन पर्दे हैं। मैं नहीं जानता कि मैं कितने समय तक जीवित रहूंगा, लेकिन इसे याद रखें, जैसा कि मैंने आपको बहुत वर्षों पहले कहा था, रूस को देखो, वहाँ तीन पर्दे हैं, इसे याद रखें। वहाँ एक लोह का पर्दा है, वहाँ बांस का पर्दा है, लाल, चीन और वैसे ही आगे, और वहाँ बैंगनी पर्दा है, और उस पर्दे को देखे, यही भरमाने वाला है। इतना, यह स्त्री बैंगनी कपड़े पहने थी, किरमिजी रंग, सोने से सजा, बहुमूल मणियों और मोतियों से। आपको मुझे यहाँ पहले बोलते हुए याद होगा, निकोलियन की पहली वेदी कैसी थी? देखा, स्त्री कलीसिया होने के कारण, उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था। आपको याद है वेदी पर सोना चढ़ा हुआ था, वो प्याला जिसे वो लोगों को दे रही थी, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। यह वही है जो वह लोगों को दे रही है। वे इसे निगल रहे थे, निश्चय ही इसे पीते रहे, बस पीते रहे, वे सारे झुंड जो आयरिश और फ्रेंच और इत्यादि के हैं। यदि आप उस कलीसिया के विरोध में एक भी बात बोलते हैं तो वे गला काट देंगे, निश्चय ही वे करेंगे। देखा, और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बाबुल। अब बाबुल कहाँ से स्थानांतरित हुआ? बाबुल से पिरगमुन में, और बन गया शैतान अपने आसन को बदल रहा है। ओह, काश हम सारे प्रकाशित वाक्य में से होकर जा सकते ताकि आप इसे देख सकते। वो बड़ा बाबुल, वो वैश्याओं की माता, वैश्याओं की एक माता और धरती की घृणित वस्तु, वह क्या थी? वैश्याओं की एक माता, वे पुत्र नहीं थे, क्या वे थे? उनकी कलीसियाएं, जी हाँ श्रीमान, कहा, क्या कलीसिया को बाइबल में बाबुल नहीं कहा गया है? देखो, उनकी अपनी किताब में, तो ठीक है। अब यदि वो एक घृणित काम करने वाली थी, एक वैश्या थी और वह एक वैश्या की माता थी, तो उसके पास पुत्रियां होना था, और यदि वे पुत्रियां थी तो वे लड़कियां थी, वे कलीसियाएं थी। अब प्रोटेस्टेंट कलीसिया कहां से आई? क्या यह सही है? एक कामुकता का काम करने वाली और एक वैश्या में क्या फर्क है? ये एक ही बात है। मार्टिन लूथर बाहर आया परिवर्तन को लाने के लिए, ताकि सच्ची कलीसिया को मौका दे। वेस्ली और आगे पेंटिकॉस्ट में और उनमें से हरेक वहां सीधा वापस निकलियों के विचार मत पर संगठित होते गए, प्रधान अध्यक्षों और बाकी हरेक के साथ, और सीधे वापस उसी बपतिस्मा के साथ चले गए जिसमें उन्होंने बपतिस्मा लिया था। उसी प्रकार से, वैसे ही रीति रिवाज, यहाँ तक उनमें से बहुत से कैथोलिक शिक्षा के साथ थे, और जय मरियम नहीं, बहुत सी मरियम, लेकिन क्या यही है? यह उसी चीज के बारे में बताते हैं, वो प्रेरितों की संप्रदाय। मुझे बाइबल में प्रेरितों के संप्रदाय दिखाएं। भाई, यदि उनके पास एक संप्रदाय थी तो ये प्रेरितों के काम 2:38 है, यही है जिसे उन्होंने सबको करने की आज्ञा दी थी। आपने कभी सुना है कि एक प्रेरित ने एक संप्रदाय को बनाया? कहते हुए, मैं पवित्र रोमन कैथोलिक कलीसिया में विश्वास करता हूँ, मैं संतों के प्रभु भोज में विश्वास करता हूँ। जब पतरस, वो एक जिसके पास चाबी थी, कहा, परमेश्वर और मनुष्य के बीच कोई और बिचवाई नहीं है सिवाय यीशु मसीह के, लेकिन प्रोटेस्टेंट कलीसिया को देखें, उन्होंने क्या किया? वे संतुष्ट नहीं हो पाए। उनमें से हर एक जो बाहर आए, वे एक पेंटिकॉस्टल आशीष के साथ बाहर आए। यह बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि मार्टिन लूथर ने भी अन्य जुबान में बात की। यह बिल्कुल सही है। खुद के लिए क्षमा मांगी, यह कहते हुए, परमेश्वर, ये भयानक शब्द जो मैं बुदबुदाता हूँ और मैं नहीं जानता कि मैं क्या कह रहा हूँ, समझे? निश्चय ही उसने इस पर विश्वास किया, निश्चित रूप से उसने किया। अब आगे युग में से होते हुए उनके पास आत्मा था, लेकिन वे हमेशा ही दूर होते चले गए और संगठनों को बनाया उनके पहले संस्थापकों के चले जाने के बाद। यदि आप लूथरन कलीसिया को आगे बढ़ने देते हैं और इसे संगठित नहीं करते हैं, तो यह पेंटिकॉस्टल रहा होता। पेंटिकॉस्टल कलीसिया क्या है? मेरा मतलब सच्चा पेंटिकॉस्टल से है, न ही संप्रदाय से। अब यह फिर से मटका और पतीले के जैसा ही है, देखा? लेकिन उन्होंने उसी काम को किया और इसने उन्हें ठीक पीछे निकलियों पर उसी तरह से रख दिया जैसा उन्होंने आरंभ में किया था। कितने लोग इसे देखते हैं? आमीन कहें, यह सही है। अब बस वैसे ही जो मेरे पास आपके शब्द हैं कि आप देखो, वैश्याओं की माता, यदि वे वैश्याएं हैं तो वे कैसे वैश्याएं बन गई? परमेश्वर के वचन के विरुद्ध घृणित काम करने से। यदि परमेश्वर के वचन ने कहा, पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, और वहाँ हर एक व्यक्ति ने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था, और उसके बाद तुमने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को लिया, यही वैश्यावृत्ति है, क्या यह सही है? और यदि बाइबल का बपतिस्मा डुबाने के द्वारा होता है, बैप्टिसो, जो ग्रीक शब्द से है, तो आपको कहाँ से जल का छिड़कना और जल का डालना मिल गया? यह कहाँ पर से आता है? यदि आप हाथ मिलाने के स्थान पर कुछ और करते हैं, या अपने होठ पर एक पपड़ी के टुकड़े को रखते हैं और इसे निगलते हैं, या ऐसे ही कुछ और करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, और यह पवित्र आत्मा एक सनसनाती हुई सामर्थ्य आंधी की तरह आकाश के नीचे उतरा और लोगों को भर दिया और उन्हें अन्य जबान में बोलने को दिया और चिल्लाने को लगाया, और वे एक नशे में व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगे, और तुमने इसके स्थान पर हाथ मिलाना कर दिया, या कलीसिया में अपने लिए लिखित पत्र को रखना, या ऐसा ही कुछ, आप भला कैसे कभी उस आत्मिक व्यभिचार को करने के मार्ग से बाहर निकलेंगे? अब बस अपने आप से यह पूछें, अपने दिमाग को हिलाएं, अपने हृदय को खोलें और ईमानदार बने। भाइयों, हम मार्ग के अंत में हैं। ये सभाएं ऐसे ही या व्यर्थ में निर्धारित नहीं की गई हैं, ये परमेश्वर के आदेश से की गई थी। मुझे बस उतना ही विश्वास है जितना कि मैं आप मुझे उसका दास करके विश्वास करते हैं। मैं इसे यीशु के नाम में कहता हूँ कि यहाँ आने के लिए परमेश्वर ने मेरे हृदय पर डाला है। मुझे यह करने के लिए एक पैसा नहीं मिलता है। मैं यहाँ से बाहर बीमारों के लिए प्रार्थना के लिए जा सकता था या ऐसा ही कुछ, या मैं बाहर मछली पकड़ने के लिए जा सकता था और अपने पैसों को उसी तरह से ले सकता हूँ, मुझे कलीसिया से जो वेतन मिलता है। लेकिन परमेश्वर ने इसे मेरे हृदय पर डाला, मैं इससे दूर नहीं जा सकता था, बस वो मुझे बताता रहा और मैं ये सब कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ प्रभु के नाम पर हूँ, वो सब कुछ कर रहा हूँ जो मैं जानता हूँ कि कैसे करना है। इस बात से आप न चूकें। अब प्रोटेस्टेंट, क्या आप देखते हैं कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कलीसिया से मेरा क्या मतलब है? बस वे बस एक दूसरे ही की तरह हैं। यह बिल्कुल सही बात है। अब अर्थ है विवाहित, पिरगमुन का अर्थ है विवाहित। अब आइए लेंगे, उसने कहा तुम में से कितने ऐसे हैं जिनके पास बिलाम की शिक्षा है, आइए अब इसे लेंगे। क्या हमारे पास समय है? मैं जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करूंगा, या क्या आप कुछ समय तक बस रुके रहेंगे और देखें यदि हम सुबह इस बात पर वापस आ सकते हैं? बल्कि कितने लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, बस थोड़ी देर तक और लें? आओ तो ठीक है। अब मैं जानता हूं कि यहां पर गर्मी है, और यदि आप एक ही स्थान पर स्थिर बैठे हुए होते हैं और गर्मी है तो आप यहां ऊपर के लिए क्या सोचते हैं? क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन ओह प्रभु, हम इस स्थान से दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं जो गर्म है। देखे, यह वही है क्योंकि हम अनंत हैं। अब निश्चित रूप से, अब जब उन्होंने इस तरह से एक कलीसिया को स्थापित किया तो क्या हुआ? अब ध्यान से सुने मेरे बच्चों, क्या हुआ? क्योंकि अवश्य ही इससे पवित्र आत्मा ठीक कलीसिया से बाहर हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके किसी बिशप ने मृतकों को जीवित नहीं किया या अद्भुत काम नहीं किया, और वे इनमें से कुछ संत उनकी कलीसियाओं के बारे में बताते फिरते हैं। उन्होंने वो बात का विरोध किया, लेकिन वो उनका दावा करते हैं। जो इन ऑफ आर को देखो, वो युवा लड़की, मैं आप कैथोलिक लोगों या आप प्रोटेस्टेंट, आप में से किसी से पूछता हूँ, जॉइन ऑफ आर्क, उसके दिन में वहाँ फ्रांस में कुछ भी नहीं था लेकिन कैथोलिक कलीसिया जिसने संतों को नीचे दबा दिया था, लेकिन परमेश्वर उस लड़की पर आ गया और उसके पास पवित्र आत्मा था। और उसने क्या किया? वह होने वाली बातों को पहले से बता सकती थी, प्रभु उसे दर्शनों को देता और इसका पूर्वाभास देता। उसने बीमारों के लिए प्रार्थना की, उसने एक छोटे से मरे हुए बच्चे के लिए प्रार्थना की और उसका जीवन फिर से वापस आ गया। यही पेंटिकॉस्टल है, समझे? और कैथोलिक कलीसिया ने उसके साथ क्या किया? क्योंकि उसने कैथोलिक कलीसिया का विरोध किया था, उन्होंने उसे एक मुकदमे के लिए बुलाया और उसे एक खूंटे से बांधकर, चुड़ैल बांधकर जला दिया। और अभी आप कहते हैं संत आर्क ऑफ जोइन, लगभग 200 वर्ष के बाद जब कलीसिया को मालूम हुआ कि उन्होंने क्या किया है कि वह एक संत थी, ओह अवश्य ही उन्होंने इसके लिए पश्चाताप किया। उन्होंने उन याजकों की देहों को खोद कर निकाला जिन्होंने उसकी मृत्यु की मंजूरी दी और उन्हें नदी में फेंक दिया। आप सोचते हैं कि इससे वे कभी भी अपने हाथों से लहू को धो लेंगे? बाइबल ने कहा हरेक शहीद का लहू उस स्त्री में पाया गया था। यही है जो प्रभु के दूत ने कहा जो बाबुल में पाया गया था, हरेक हत्या या एक शहीद और मसीह के सारे संत जो कभी शहीद हुए थे वे ठीक यहाँ पर पाए गए। यही निकोलियन के युग में से होते हुए आगे हरेक शहीद, इस पर सोचें। धन्यवाद भाई बहन, अब इस पर सोचें। अब थोड़ा सा अब और आगे जाएंगे। मसीही कलीसिया ने बाबुल से विवाह किया, पिरगमुन का अर्थ है विवाह। अब बिलाम की शिक्षा, तुम्हारे बीच में वे हैं जिनके पास बिलाम की शिक्षा है। ओह मैं बस इन बातों को पसंद करता हूँ। ओह यदि आप बस इस एक पर लंबे समय तक रुक सकते हैं तो देखें, लेकिन आप बस, हम आपसे चाहते हैं कि इसे देखें और उसके बाद किसी और बात पर आगे बढ़ें, क्योंकि यह तो बस सोने के मूल्यवान डलियों से भरा पड़ा है। मैं एक सोने चांदी की खान को खोजने वाला हूँ। मैं नीचे जाकर और इन सोने की मूल्यवान डलियों को खोदना पसंद करता हूँ और उन्हें चमकाना और उन्हें इस तरह से चमकाना और उस पर देखना, और उसमें से हरेक यीशु मसीह को प्रतिबिंब करेगा। उसमें से हरेक, देखो उसमें से हरेक यीशु मसीह को प्रतिबिंब करता है। वह अल्फा और ओमेगा है। हरेक सोने का कैरेट जो उस मूल्यवान डली में है, यह सही है। इसका हरेक कण वो ही है। यही कारण है कि वह दैविकता है जो देदारी होकर हमारे बीच में वास किया। अब लेने के लिए मैं इसके लिए समय को नहीं लूंगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये 9 बजे हैं और मेरे पास एक और चीज है जिस पर मैं आज रात को जिसमें जाना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर चाहता है तो। और मैं चाहता हूँ कि आप इसे लिख कर रख दें और आप इसे कल पढ़ें, और आप 22 से लेकर 25 की संख्या को लिख कर रखें। मैं चाहता हूँ कि आप इसे अभी पढ़ें और आप मेरे पीछे पीछे आ सकते हैं और अब संख्या 22 से लेकर 25। हम जानते हैं कि इज़राइल परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, क्या यह सही है? वे पेंटिकॉस्टल थे, उनके बीच में आत्मा थी। क्या आपको पिछली रात का संदेश याद है, कैसे वो मूसा जब उसने लाल समुंदर या मृत्यु के समुंदर को पार किया था और उसके पीछे लाल समुंदर में देखा लहू को दर्शा रहा था। वे सारे शक्ति से काम लेने वाले जिन्होंने हमेशा ही उसे और इज़राइल की सारी संतान को पीटा था। मूसा ने हाथ को ऊपर उठाया और आत्मा में गाने लगा। और हम में से हर एक जन मूसा हो सकता है जब हम पीछे प्रभु यीशु के लाल लहू में देखते हैं और देखते हैं हर एक पुरानी शराबी को, हर एक पुरानी बोतल, हर एक अश्लील स्त्री, हर एक पुरानी गंदी चीज जिसे हमने कभी अपने जीवन में किया था, सारे प्रभु यीशु के लहू से मरे हुए हैं, जो हमें आत्मा में गाने को लगाता है। सिगरेट, तंबाकू और बुरी आदतें और बाकी हर एक चीज मरी हुई है प्रभु यीशु के लहू में, तब हम हाथ को उठाकर और आत्मा में गा सकते हैं। समझे? देखो मरियम ने क्या किया जो भविष्यवक्तिनी थी। अब याद रखें, वो एक भविष्यवक्तिनी थी। उसने झांझ को उठाकर और झांझ को बजाना आरंभ किया और आत्मा में नाचने लगी और इज़राइल की पुत्रियों ने किनारे पर उन झांझों को बजाते हुए उसका अनुसरण किया और आत्मा में नाचने लगी, सच्चे पेंटिकॉस्टल। और फिर यदि आप ध्यान दें, वे जब मोआब में आए, अब हम वापस आ रहे हैं, हम वहाँ पर हैं। अब बिलाम की शिक्षा, और मोआब इज़राइल का भाई था। कितने लोग जानते हैं कि मोआब कहाँ से आया? तो ठीक है, जो मोआब है मैं उसे संकरित कहूँगा, क्योंकि उस मोआब की शुरुआत लूत की पुत्रियों से हुई। लूत को उसकी अपनी ही पुत्री से एक बालक था जिसकी दो संतान थी, और मोआब उनमें से एक था, और उसने मोआब नाम के राष्ट्र का गठन किया, उस जाति का। और असल में लूत अब्राहम का भतीजा था, जो वास्तव में वापस उसी रेखा पंक्ति में आता है। हम ये जानते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि वे पागान नहीं थे, जैसा कि हाल ही में हमारे कुछ नाटकों में आपको बताया। याद रखें, वे विश्वासी थे। अब जब यहाँ इज़राइल प्रतिज्ञा किए देश के लिए उन मोआबी की सड़क पर आए, अपने लिए मार्ग को बनाते, ठीक उनके कर्तव्य को पूरा कर रहे थे, और यहाँ ठीक रास्ते में मोआब देश आता है, और उन्होंने मोआब के पास दूत भेजे और कहा, हमें तेरे देश से होकर जाने दे, हम तेरे भाई हैं। अब मोआब निकलियों को दर्शाता है। अब आप बस एक मिनट में देखना, इज़राइल सच्ची कलीसिया को दर्शाता है, और वो बिलाम उन बिशपों पोप में से एक था। अब देखो और समझो, सांसारिक मसीहत। अब हम देखेंगे कि वह दान पाया हुआ मनुष्य था, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। उसमें से बहुत से अच्छे बोलने वाले व्यक्ता थे, दर्शन शास्त्र के विज्ञान थे, और बड़े बड़े मनुष्य थे। आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन भक्ति का भेष तो धरते हैं, लेकिन उसकी शक्ति का इनकार करते हैं। उस मूल पेंटिकॉस्ट पर वापस जाएं, वहाँ से दूर नहीं जाएं। यदि जब आप दूर जाते हैं तो आप नष्ट हो जाते हैं। उस आशीष के साथ बने रहें, ऐसा ही है आशीष का पात्र। अब ध्यान दें, जब उन्होंने यात्रा की, वे इस औपचारिक संकरित कलीसिया में आए और उन्होंने कहा, हम एक बेदारी से होकर जा रहे हैं, हम प्रतिज्ञा किए हुए देश पर जा रहे हैं, क्या आप हमें इसमें से होकर जाने की अनुमति दोगे? यदि हमारे पशु कुछ भी घास फूस को खाते हैं, यदि वे कुछ पानी को पीते हैं, तो हम आपको इसका भुगतान करेंगे। तो उसने क्या किया? राजा बालाक, वह पूरी तरह से उत्तेजित हो गया, और वह इस तरह की सभा को अपने कलीसिया या देश में नहीं चाहता था। तो उसने क्या किया? वह पोप या बिशप बिलाम के पास गया, एक भाड़े का भविष्यवक्ता। वो परमेश्वर की तुलना में पैसे से अधिक प्रेम करता था। और राजा बालाक ने उससे कहा, यदि तुम यहाँ आकर इस लोगों को शाप दोगे, तो मैं तुम्हें एक महान व्यक्ति बना दूंगा। और परमेश्वर ने बालाक से बात की, और मैं सोचता हूँ कि यदि ऐसा होता, मेरा मतलब है कि बिलाम से, सोचता हूँ आज रात कितने बिलाम इस संसार में हैं, मेथोडिस्ट सेवक, बैप्टिस्ट सेवक, कैथोलिक याजक, दया, जो जानते हैं कि परमेश्वर, क्या आप उसी इतिहास और उसी पुस्तक को पढ़ते हैं जो मैं पढ़ता हूँ? बिलाम अब ध्यान दे, फिर उसने कहा नीचे आकर और लोगों को शाप दो, और बिलाम ने कहा मैं परमेश्वर से पूछूंगा, परमेश्वर ने कहा तुम मत जाना, लेकिन अगली सुबह उसने कहा, उसने जाकर और याजक या राजा को बताया और वो वापस आया, कहा ओह मैं तुम्हें एक महान व्यक्ति बना दूंगा। वो बिलाम चलता गया, परमेश्वर ने कहा तब तुम जाओ, तुम आगे जाओ। देखो यदि आप सत्य का पालन नहीं करेंगे, आप निकुलियन सोचते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर आपके लिए कर रहा है। जो भी आप इस तरह से कर रहे हैं वहाँ मूल सत्य है। आप तो केवल परमेश्वर जो अनुमति करता है उसे ले रहे हैं। आप कहते हैं परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है या वो हमें आशीष देता है और हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं। तुम बिलाम के लोगों, देखो बिलाम की शिक्षा, परमेश्वर ने उसे बताया उसके बहुत अहंकारी होने के बाद उसने बस उसे आगे जाने दिया, खुद को लटका दिया। आपको सत्य की ओर वापस जाना होगा, मूल सत्य की ओर वापस जाना है, बुनियादी सत्य बाइबल की ओर वापस जाएं। ओह तो ठीक है, उसने हमें आशीष दी है और ओह मैं ये जानता हूँ उसने दिया है। बिलाम से कहा आप आगे बढ़ें, यदि आप जाना चाहते हैं तो, यदि आप उस तरह से जाने के लिए बाध्य हैं और आप संगठन के मार्ग को लेना चाहते हैं, इसे लें, चलते रहें। तब बिलाम निकल पड़ा और वो अपने खच्चर पर कूद कर बैठ गया, या अपने खच्चर पर नहीं, अपने गधे पर, वहाँ नीचे की ओर वह चला गया। और पहली बात आप जानते हैं, प्रभु का दूत रास्ते में खड़ा था, और आप जानते हैं कि वो भविष्यवक्ता, वो पोप, बिशप, कार्डिनल, वो जो कुछ भी था, वो आत्मिक चीजों के लिए अंधा हो गया था। वो विचार जो उसे बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि वह यूफ्रेटिस नदी पर रहा था, मैं अनुमान लगाता हूँ उसने सोचा यह कुछ विरासत थी, जैसे इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा, पतरस या कोई तो चट्टान, जो रोम या कुछ तो। लेकिन जब वह इस स्थान पर पहुँचा तो वहाँ एक दूत निकली हुई तलवार के साथ खड़ा हुआ था, और वह इतना अंधा था कि वह उसे देख नहीं पाया, और खच्चड़ का पैर दीवार के सामने जाकर टकरा गया, और फिर वह उस पर सवार होकर आगे बढ़ा, और वह दूत फिर से रास्ते में खड़ा हो गया। परमेश्वर ने हर एक द्वार को बंद किया, और ये खच्चर फिर भी यहाँ वहाँ घूम रहा था। वो नीचे कूदा और अपनी छड़ी ले ली, और उस छड़ी से उसे फटकारना आरंभ किया। यह छोटा गधा वहीं पर लेट गया, उसके सिर पर पिटाई होने लगी, और मुझे पक्का है जिसने उसे बदल दिया, जो उसे उस विचार की ओर ले गया या उसे बताया कि वह कहां पर गलत था, उसने उस खच्चर को अन्य जुबान में बोलने को लगाया। ना ही वो खच्चर था, वह एक गधा था। ना कहें कि वो एक खच्चर था, उसे यह नहीं मिल सकता। खच्चर एक संकरित था, आप समझे, वह मूल बीज था। मोआब ऐसा था, चिन्ह बीत गए, सारी चीजें बीत गईं। इज़राइल चिन्हों के पीछे चलने वाले थे, लेकिन ये छोटे से गधे ने मुड़कर और कहा, क्या मैं तुम्हारा गधा नहीं रहा हूँ? क्या मैंने हमेशा ही, और वो अंधा बिशप वहाँ पर बैठा हुआ अब भी उस खच्चर की पिटाई कर रहा था, और खच्चर उससे बात कर रहा था अज्ञात भाषा में खच्चर से, और उसने कहा हाँ तुम मेरे गधे हो, और क्या मैंने हमेशा ही तुम्हें उठाकर नहीं ले गया, या क्या मैंने कभी तुम्हें विफल किया है? नहीं, तूने नहीं किया है, लेकिन यदि मेरे पास तलवार होती थी तो मैं तुम्हें मार देता, मैं इस सभा को रोक देता, मैं अपने आगे के मार्ग पर हूँ ताकि इस देश से होकर जाने वाले उस पवित्र चीखने चिल्लाने वाले झुंड को रोकूं, मैं इसे तुम्हारे ऊपर डालता हूँ, समझे। और पहली बात जो आप जानते हैं वह यहाँ वहाँ देखता, उसने सोचा तो ये अजीब सी बात है, मैं उस खच्चर को बात करते हुए सुन सकता हूँ। ओह बिलाम, देखिए परमेश्वर ने हमेशा ही लोगों से अन्य जुबान में बात की है, उसने उन दिनों में किया था। आप कहते हैं यह केवल पेंटिकॉस्टल पर होता है, ओ नहीं नहीं नहीं, बेल शेजर के भोज में उसने अन्य जुबान में बात की, इसे दीवार पर लिखा। उनके पास एक पुरुष था जिसके पास अनुवाद का दान था, सो उसने उनके लिए इसका अनुवाद किया कि यह क्या था। आज भी वैसी ही बात है। तो इसका कोई अनुवाद नहीं होने का जो कारण था, परमेश्वर ने बस इस बूढ़े बिलाम को जगाया, इस कार्डिनल को, और महसूस करवाया कि यह क्या था। और क्या आप जानते हैं कि अंधा व्यक्ति किसी भी तरह सीधा आगे बढ़ते गया? निश्चय ही इसी तरह से वे आज भी करते हैं वही चीज। वे मोआबी लोग, निकोलियन, वे सीधे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और वे ठीक वहाँ पर चले गए और वह चला गया। अब देखो, यदि परमेश्वर रूढ़िवादियों के लिए विचार करता था तो वह मोआब को आशीष देने के लिए कर्तव्य से बंधा हुआ था, क्योंकि ध्यान दें, बिलाम ने 7 वेदियों को बनाया था। बिल्कुल ऐसा ही है, वो अंक 7 कलीसिया काल। देखा किस तरह से आत्मिक बात लागू होती है। अब इसे पकड़े रहें, आत्मिक बातों को लागू करें। मैं इसे एक मिनट में लूंगा, एक अटल स्थान पर। देखो, आत्मिक बातों को लागू करें, 7 वेदियां, 7 बैल जो साफ जानवर हैं, और 7 मेढे मसीह के आगमन के लिए बोल रहे हैं, उसके आने के सैकड़ों वर्ष पहले। लेकिन उन्होंने क्या विश्वास किया? उन्होंने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया था। उन्होंने और क्या विश्वास किया था? उन्होंने विश्वास किया था कि बलिदान को अर्पण किया जाना था। यह सही है। और उन्होंने क्या किया कि उन्हें विश्वास है कि मसीहा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने एक नर भेड़ को अर्पण किया जो एक मेढ़ा था। यह सही है। अब आप एक बार केवल एक बैप्टिस्ट के साथ जोड़ें, देखें कि क्या वे उसी चीज को नहीं करते हैं। यह बिल्कुल सही है। तो ठीक है, अब क्या अंतर है? यहाँ इसराइल पहाड़ी के नीचे तल पर है, उसी भेंट को चढ़ा रहा है जिसे उन्होंने यहाँ भेंट चढ़ाया था, उसी परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए। क्या आप निकलियों को नहीं देख सकते हैं? वे संकरित, इसे देखा? क्या आप सच्चे आत्मिकता को नहीं देखते? उनमें क्या अंतर था? उनमें से एक के चिन्हों का अनुकरण कर रहे थे, दूसरे के पास एक रूप था, दूसरे के पास चिन्हों का अनुकरण करना था। यह वही चीज है जिसने यहाँ पर जगह ली थी। निसियन परिषद, निकोलियन, औपचारिक मसीहत, और पवित्र आत्मा ने वापस आकर कहा, तुम्हारे बीच बिलाम की शिक्षा है। देखा, और तुम, मैं निकोलियों के कामों से घृणा करता हूँ, वे शिक्षाएं जो उनके पास है, क्योंकि यह बिलाम की शिक्षा है जिसने इसराइल की संतान को सिखाया ताकि ठोकर खाए। उसने इसे कैसे किया? फिर जब वह लोगों को शाप देने के लिए गया, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी जीभ को बांध दूंगा, जितना मैं बताऊं तुम उससे अधिक नहीं बोल सकते हो, तुम उसे शाप नहीं दे सकते जिसे मैंने आशीष दिया है। तो उसने वहाँ नीचे देखा और इस ढोंगी को देखो, ओह, हम बस इस बात पर बने रह सकते हैं। देखा, इस बूढ़े बालक को देखो, वो इस सब का प्रधान यहाँ इसे झूठा नबी बताया, कहा वहाँ जाओ और बस इसके पिछले भाग की ओर देखो। इसी तरह से वो बड़ी कलीसियाएं परमेश्वर के छोटी सी संख्या के लोगों को कहना पसंद करते हैं। आप जानते हैं क्या, मैं उनमें से एक को जानता हूँ। लड़के, क्या तुम जानते हो कि उसने क्या किया? उसने ऐसा किया और उसने वैसा किया। वे पेंटिकॉस्टल हैं, निश्चय ही। ओह, लेकिन यदि आप केवल उनके बारे में बस सच्चाई को जान जाते, लेकिन वे अखबार और चीजें उसे शांत रखेंगे। लेकिन छोटा सा पेंटिकॉस्टल, कुछ तो सही बात के साथ बाहर आने दो और देखो कि सारा देश इससे कैसे शोर मचाने लगता है। निश्चय ही, जी हाँ श्रीमान। लेकिन अब ध्यान दे, उसने कहा, बस इसके पिछले भाग की ओर देखना, पीछे इसका जो सबसे बदतर भाग है। बिलाम ने कहा, जी हाँ, मैं केवल पिछले भाग को देखूंगा, यह खराब भाग जिसे वे करते हैं, यही है जो मैं करूंगा। मैं बस उनके चिड़चिड़ेपन को देखूंगा। उनके पास कोई अच्छाई नहीं है, क्योंकि यदि आप कोई अच्छाई को नहीं देख रहे हैं तो वे नहीं थे। ये सही है। उन्होंने तारीखों पर हर पाप को किया था, लेकिन जिसे वो देखने से चूक गया, वह उस प्रहार की हुई चट्टान को देखने से चूक गया, उस पीतल के सर्प को, उनके बीच जो राजा का आनंद था, चंगाई, चिन्हों को, आश्चर्यकर्म, और उनके ऊपर वो लटकता हुआ अग्नि का स्तंभ। वो अंधा भविष्यवक्ता इसे नहीं देख सका, नहीं श्रीमान, लेकिन वो उनके खराब भाग को दिखा रहा था। ठीक है, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो दूसरे की पत्नी के साथ भाग गया। मैं इसे जानता हूँ, उसने कुछ पैसे चुराए थे। ये सही है, मैं इसे मानता हूँ। लेकिन उनके पास भी वहाँ वही बात थी, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, समझे? तो वो केवल बदतर भाग को दिखा रहा है। लेकिन उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, तुम बस वही कहो जो मैं कहता हूँ। और बिलाम आत्मा में आ गया, एक अवचेतना के अंदर चला गया, और इसराइल को शाप देने के बजाय उसने इसे आशीष दिया। आमीन, वहाँ वो था। अब यदि परमेश्वर ने प्रतिफल दिया था, या उन सिद्धांतों को सम्मान करता है, इन बड़े विद्यालयों और बड़े सेमिनारों और कॉलेज और पीएचडी और डीएलडी ओह सभी तरह के डीडी के लिए सम्मान करता है, फिर क्या होता यदि उसे उसका आदर करना होता, फिर आप कर सकते तो उसे उनका भी आदर करना पड़ता, समझे। लेकिन उसने सम्मान किया था और इन लोगों को एक आशीष के साथ आशीषित कर चुका था, क्योंकि वो आत्मा, वो राजा, उन्होंने कहा राजा की ललकार तंबू में है। कौन सा संतों का राजा, चिल्लाना और आनंद किस बात के लिए? एक और राज्य के लिए। मैं आपको साबित करूंगा कि वे लोग सांप्रदायिक नहीं थे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे करूं? मैं सोचता हूं कि इसके लिए यहां एक वचन को रखूं। जी हां श्रीमान, मैं आपको ये साबित करूंगा कि इज़राइल नहीं था। आइए गिनती की किताब की ओर वापस जाएंगे, बस इसलिए कि आप देख सके कि वे नहीं थे। वे अब मोआब एक बड़ा संप्रदाय था। हम गिनती का 23:9 लेंगे, मैं इसके साथ 8वें पद को लूंगा। और उन्हें मैं क्यों शाप दूं? बिलाम ने कहा, जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी, उन्हें मैं कैसे धमकी दूं? अब सुनना कि क्या उसने क्या कहा, क्योंकि चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, यह परमेश्वर है, न ही नीचे घाटी में से लेकिन चट्टानों के ऊपर से। ओह उसकी आंखें चिड़ियों पर है और मैं जानता हूँ कि वो मुझे देखता है। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, आमीन, न ही किसी कोई घाटी के पीछे वापस, जिससे कि आप उनके भाग को देख सकते हैं। मैंने पूरी चीज को देखा, परमेश्वर ने कहा, चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। क्या इससे बात सुलझ गई? वे एक संप्रदाय नहीं थे, राष्ट्र। ओह वे भटक रहे थे तंबू में, गलियों में, वहाँ सड़क के कोने पर, छोटा सा मिशन, पीछे जाकर कुछ समय रहते उन्हें लात मारकर बाहर निकाल देते। परमेश्वर चाहता था कि वे कहीं और चले जाएं। देखा, भटकने वाले, सही है। जमैका में ज्यादा समय नहीं हुआ, वहाँ धर्मशास्त्र का एक अच्छा पेंटिकॉस्टल विद्वान खड़ा था और मैंने कहा, ओ प्रभु ने कैसे पूर्व पेंटिकॉस्टल कलीसिया को आशीषित किया, उनके पास कुछ भी नहीं था। मैंने कहा वे बस लगभग भटक रहे थे। उसने कहा, हूँ भाई ब्रैनम। मैंने कहा, जी हाँ भाई, मैं उसे प्रेम करता हूँ, वो अच्छा भाई है। और उसने कहा, मैं केवल आपको दिखाना चाहता था कि आप कहाँ पर गलत हैं। मैंने कहा, ओह मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ, मैं हमेशा जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, क्योंकि परमेश्वर इसे जानता है कि मैं गलत नहीं होना चाहता। मैंने कहा, तो ठीक है, यदि मैं गलत हूँ मैं निश्चय ही यह जानना चाहूँगा भाई, धन्यवाद। उसने कहा, आप उन पेंटिकॉस्टल लोगों की प्रशंसा करते रहते हैं। मैंने कहा, जी हाँ। उसने कहा, उनकी भयंकर गलती थी जो उन्होंने कभी की, जब उन्होंने अपनी संपत्ति को बेच दिया। कहा, जब सतावट बढ़ने लगी तो उनके पास यहाँ तक जाने के लिए घर भी नहीं था, उनके पास जाने का कोई स्थान भी नहीं था और वे लगभग भटकते रहे। मैंने कहा, बिल्कुल ये परमेश्वर की इच्छा है। उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, यदि उनके पास एक घर होता तो वे वापस चले गए होते, लेकिन उन्हें यहाँ से वहाँ तक जाना था। हर जगह इस खबर को फैलाने के लिए पवित्र आत्मा आ चुका था। मुझे मत बताओ कि परमेश्वर कोई गलती करता है, वह कभी भी गलती नहीं करता, वह जानता है कि इसे कैसे करना है। उन्होंने अपनी संपत्ति को बेच दिया और यहाँ वहाँ भटकने वाले बन गए, हर जगह खबर को फैलाते हुए, और कहा इस खबर को सारे संसार में फैलाया गया था। तब सारे संसार ने जान लिया उन भटकने वाले लोगों के द्वारा जो पवित्र आत्मा पाने के लिए सब कुछ छोड़ देते थे। वे लोग एक संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, समझे। अब याद रखना, संप्रदाय वह है जिसे परमेश्वर कहता है बिलाम की शिक्षा के अंदर डाला गया। तो फिर जब वो उन्हें इस संप्रदाय में नहीं ला सका, तो आप जानते हैं कि बिलाम ने क्या किया? अब ध्यान से सुनना, हम बंद करने के नजदीक आ रहे हैं। अब बिलाम ने क्या किया? उसने उसी काम को किया जो उन्होंने या नीसियन के परिषद में किया था। इसी कारण से उसने कहा, तुम्हारे पास बिलाम और उन निकुलियों की शिक्षा है। जब निकुलियन के लोग थे जो बाहर निकलकर और संगठन को बनाना चाहते थे और इत्यादि, जो अतः कितने लोग जानते हैं कि ये सच्चाई है? जब मैं संगठन कहता हूँ, यह बिल्कुल ठीक परमेश्वर की सच्चाई है। और उन्होंने आखिरकार संसार के सबसे बड़े संगठन को संगठित किया और उन्होंने इसे क्या बनाया, एक कैथोलिक, और कैथोलिक शब्द का अर्थ क्या है, विश्व संबंधी, एक संगठना, संसार भर में संगठित, यह सारी छोटी छोटी चीजें एक कलीसिया में आना चाहिए। अब यदि आप ध्यान दें, ओह मैं, आप बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखो बाबुल क्या था, बाबुल की स्थापना किसने की, निमरोद ने। उसने क्या किया, उसने एक बड़े से नगर में एक बड़ी मीनार को बनाया और अन्य सारे नगरों को बनाया, इस नगर को सम्मान दिया, संगठना, यही उसकी पृष्ठभूमि है। निश्चय ही यहाँ ठीक कलीसिया युग में आते हुए और फिर से संगठित किया और सारे राष्ट्रों को इसके अंदर लेकर आया, और ठीक वहाँ पर उसने कहा, वो वेश्या जिसने सारे राष्ट्रों को उसके व्यभिचार की मदिरा को पिलाया, उसका व्यभिचार जिसे वो कर रही थी, मसीही होने का दावा कर रही थी और इस तरह की चीजों को वहाँ दे रही थी, कैथोलिक शिक्षा, प्रार्थना की किताबें और बाकी सारी चीजें, और प्रोटेस्टेंट ठीक उसी के साथ आते हैं, ठीक उसी तरह, बस उनके पथ में चलते हुए। तो ठीक है, आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब उसने कहा कि यह बिलाम की शिक्षा थी। अब बिलाम ने क्या किया जब उसने देखा कि वह इज़राइल को शाप नहीं दे सकता था? उसने बालाक को कहा कि तब यह एक अच्छा विचार होगा उसके लिए कि उनके देवता के पर्व के लिए इन लोगों को आमंत्रित करे। वहाँ ऊपर उनका एक बड़ा पर्व था, उनका जहाँ उनका पर्व होने जा रहा था, और वे उस पर्व को कहा जाता था बाल, POER, पोर, बालपोर, मुझे लगता है कि पी पोर बालपोर, यह एक पर्व था उपासना के लिए। और बिलाम ने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ बालाक, मैं तुम्हें एक अच्छा विचार दूंगा, यदि तुम परमेश्वर उन्हें शाप नहीं देगा ये सब जो वहाँ है, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम क्या करेंगे, हम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, लेकिन यदि तुम बस उन्हें आमंत्रित करो तो तुम सारी चीजों को अपनी तरफ घुमा लोगे। देखो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसे ही जो कॉन्स्टेंटाइन ने किया पूर्ण रूप से, यही कारण है बिलाम की शिक्षा। उन्होंने क्या किया, फिर वे बालाक की शिक्षा इसराइल के बीच आ गई और उन्होंने सभी इसराइलियों को इस बड़ी दावत के लिए आमंत्रित किया जो उनके पास बड़ा धूम धमाका होता था। ओह, कुछ बड़ी पार्टी और उनकी नाच गाने की पार्टी जैसी चीज जो उनके पास होती थी। और जब वे वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि ये इसराइली लोग इन सुंदर कामुकता के कपड़ों वाली मोआबी स्त्रियों को देखना आरम्भ करते हैं, जी हाँ, ये वहाँ पर वे उनकी आम लड़कियों के जैसे नहीं थी। ओह, वे बहुत सुंदर लग रही हैं। ओह, वे किस तरह से तैयार हुई हैं, और ओह, वे खुद को ऐसे कैसे दिखा सकती हैं। और वे इसके लिए गिर गए और उन्होंने वह विचार करना आरंभ किया। और बिलाम जानता था कि यदि परमेश्वर उन्हें शाप नहीं देता है तो वह उन्हें इस संप्रदाय की ओर लेकर आएगा और यह परमेश्वर के क्रोध का कारण होगा, ताकि वो किसी भी तरह से उन्हें मार डाले, परमेश्वर उन्हें खुद ही मार डाले। क्या वह कभी भी उन्हें सच्चाई के मार्ग से बाहर निकाल सकता है? और जैसे ही आप बाहर निकल जाते हैं और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाने की बजाय एक कलीसिया से जुड़ते हैं तो आप मर जाते हैं, ना ही आपके लिए, लेकिन यहाँ पर मैं इसे कुछ समय में आपके अंदर डालने जा रहा हूँ, मर जाते हैं। तुम्हारा एक नाम है, या लूथर के लिए कहा सर्दिश युग के लिए, सर्दिश शब्द का अर्थ है मरा हुआ। तेरे पास एक नाम है, तू जो जीवित है लेकिन तू मरा हुआ है, यही है जो परमेश्वर ने कहा। जी हाँ, देखा। और जब उन्होंने वह आत्मिक व्यभिचार को किया, कलीसिया ने विवाह कर लिया, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से हटकर एक संप्रदाय से विवाह कर लिया, तो वे मर गए। यहाँ है आप, यही है जो बाइबल ने कहा, यही है जो परमेश्वर ने कहा कलीसिया के लिए बोलते हुए। अब मैं यहाँ बस आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूँ कि मैं और परमेश्वर, उसने क्या किया, और अब जब उन्होंने इस दुष्ट काम को किया और वे व्यभिचार में पड़ गए थे, परमेश्वर ने उनमें से एक ही समय में 42,000 को मार डाला, 42,000 व्यभिचार करने के कारण। और यहाँ पर यह कलीसिया में किस बात को बोलता है, आत्मिक व्यभिचार, जो तुम एक मसीह होने का दावा करते हो और अब भी संसार की तरह जीते हो। ओ भाई, तुम पवित्र आत्मा को पालो, इन पुरानी संस्था और चीजों से दूर हो जाओ, वे मरी हुई हैं। प्रेरितों की संस्था या किसी प्रकार की संस्था का वर्णन करते हैं और प्रार्थना की किताब में लिखी हुई प्रार्थना को कहते हैं या ऐसा ही कुछ करते हैं। यीशु ने अपने लोगों को कभी नहीं कहा कि प्रार्थना को कहो, उसने कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। तो ठीक है, अब कॉन्स्टेंटाइन का पर्व बिल्कुल बिलाम की तरह है। अब देखो, जैसे बिलाम के पागान का पर्व था, कॉन्स्टेंटाइन के पास पागान का पर्व था, तो ठीक है, पिरगमुन को आमंत्रित किया गया था। और अब इस पर ध्यान दें, मैंने यहाँ पर कुछ तो लिख कर रखा हुआ है, मैं अब इसे ठीक अभी ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो ठीक है, मैं यहाँ इस लिखी हुई चीज को लेने की कोशिश कर रहा था, कुछ तो मैंने लिख कर रखा था, पिरगमुन को आमंत्रित किया गया था। तो ठीक है, उन्हें नीसियन परिषद के बाद एक पर्व में आमंत्रित किया गया था, उन्हें विंटर सोलस्टाइज शीतकालीन शिखर के पर्व के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसका अर्थ है सूर्य की आराधना, जो एक पागान का देवता था, जो 21 दिसंबर को पड़ता है, जो वर्ष में का सबसे छोटा दिन था, और वर्ष वही समय दिसंबर के 25 तारीख तक नहीं बदलता है। सारे मूर्ति पूजक इसे मनाते हैं, सूर्य देवता का जन्मदिन 21 दिसंबर, जो दिसंबर में सबसे छोटा दिन था। और फिर कोई भी जो कभी कलीसिया के इतिहास को पढ़ता है, वह जानता है कि उस दिन मूर्ति पूजक उपासना करते थे, यह एक उत्सव था। ठीक है, रोमन के पास बड़े बड़े खेल थे, रोमन सर्कस थे, कितने लोगों ने यह देखा है, यह जो कुछ भी था, यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ जो बाहर उनके पास थे, बेनहुर देखा, अब रोमन सर्कस, यही है जो रोमी लोगों ने सूर्य के दिन पर किया, उस सूर्य देवता के जन्मदिन की स्मृति में, देखा। और अब और उन्होंने वहाँ एक बड़े पर्व को किया और निकलियों को आने के लिए आमंत्रित किया। ओह, क्या ये अचूक नहीं है? बिलाम की शिक्षा आपके पास आप में है। देखो, पिरगमुन को बताते हुए कि उनके पास क्या था, बड़ी प्रजातियाँ थी, वहाँ उन्होंने सोचा था कि ये निकलियों ने सोचा, तो ठीक है, अब अच्छी बात है, यह बड़ा पर्व प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जी हाँ। तो फिर उस निमंत्रण के साथ, जो उस नाम के कहलाने वाले प्रधान बिशप का था या जो कुछ भी वह तब था, और हर एक चीज उन्होंने इसे एक नियमित चीज बनाने के लिए ऊपर लेकर आए, ताकि वे विचार को लेकर आए, घृणित काम को अंदर लाए, वे विचार को लाए, कैथोलिक कलीसिया का गठन करने के लिए, जिसका हर एक प्रोटेस्टेंट संप्रदाय इसका सदस्य है, संगठना, परमेश्वर का कोई संगठन नहीं है, और वो इसके उसी नाम से घृणा करता है, बाइबल ऐसा कहता है। और जब उन्होंने ऐसा किया तो क्या हुआ? उन्होंने अब कहा, उन्हें एक आत्मिक चीज को उपयोग करना था, तो उन्होंने प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र SON के जन्मदिन को अप्रैल से बदल दिया, जिसे सारे अच्छे विद्वान जानते हैं, और कोई भी जो आत्मिक प्रकाशन के साथ है वो जानता है कि वो प्रकृति के समय में जन्मा था, जब मेमने और बाकी के सारे जन्म लेते हैं अप्रैल में, उसे बहुत पीछे दिसंबर के 25वें दिन पर रख दिया, और अब भी क्रिसमस की आराधना करते हैं, अब ये सांता क्लॉज है, और क्या, ओह दया करे, देखा, अब भी और अधिक पागानों के त्योहारों को इसमें जोड़ा गया है, बस ऐसा ही है, आप वहाँ पर आमंत्रित हैं, बिलाम, तुम्हारे बीच में बिलाम की शिक्षा है, वहाँ यह है, हे परमेश्वर, अब इसे प्रकट करे पिता, देखा, जन्मदिन अप्रैल से, अब इतिहासकार का कहना है कि सारे प्रमाण है कि यीशु का जन्म अप्रैल के महीने में हुआ था, जब अन्य सभी जीवन ऊपर आने लगते हैं, लेकिन उन्होंने बदलकर दिसंबर की 25वें दिन पर कर दिया, 5 दिन बाद, देखा, पागान देवता के बाद, ताकि वे अपने रीति रिवाजों को एक साथ कर सके। पागानवाद और मसीहत और कैथोलिकवाद संसार में और कुछ भी नहीं, पागान अंधविश्वासों के झुंड और मसीहत से बाहर हटे हुओं के सिवाय, जिसे एक साथ रखा गया है, ये सही है, ये सच है। और प्रोटेस्टेंट जिसने इसकी दस्तक दी है, यह बस बिल्कुल वैसे ही वैश्या माता की पुत्री है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब परमेश्वर किसी भी चीज का सच्चा विरोधी होने के लिए हमारी सहायता करे, जो कि ईश्वरीय नहीं है, समझे, ओह। और इसके साथ आत्मिक बात को लागू करने के लिए, क्या आप जानते हैं कि बिशप ने क्या कहा। बिशप ने कहा हमें ऐसा करने का अधिकार है क्योंकि वो धार्मिकता का सूर्य है। ओ, वे एक बचाव के रास्ते को लेते हैं जैसे वे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा पर करते हैं। मत्ती 28:19 उसी प्रकार से बिल्कुल ठीक। निश्चय ही उनके पास एक बचाव का रास्ता, उन्हें ऐसा करने के लिए उन्हें एक आत्मिक बात को लागू करना है। आप देखें, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल में कहा गया है दो या तीन गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। परमेश्वर ने उस पर कहा, वो इसे तीन बार कहता है। यदि परमेश्वर कुछ और चीज को साबित करने के लिए ऊपर उठाता है, उसने पतरस, याकूब और योन्ना को लिया, उसने जो कुछ किया, उसके पास दो तीन गवाह थे, उसे साबित करने के लिए उसने जो कुछ भी किया है वहाँ से लेकर सारे वचनों के माध्यम से होते हुए, ये सही है। लेकिन आप देखें, उन छोटी चीजों को वहाँ आना है जिससे कि वे ऐसा करने के लिए उठा सकते हैं। परमेश्वर इसे दुनिया की नींव से पहले जानता था, वहाँ उनके पास था, उन्होंने आत्मिक बात को लागू किया था क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र SON है। हम बस पागान सूर्य SUN के जन्मदिन को लेंगे और इसे पुत्र SON का जन्मदिन बनाते हैं और वो धार्मिकता का सूर्य है। आप जानते हैं प्रोटेस्टेंट अभी भी उसके लिए गिरते हैं इसी तरह से कुछ। निश्चय वे इसे वचन से दूर कहीं और ले जाते हैं। ओ प्रभु, मैं आइए बस एक मिनट के लिए रुकें, तो ठीक है। यहाँ एक छोटी सी चीज को मैं लेना चाहता हूँ। आइए इस पद के अंतिम भाग को यहाँ जल्दी से ले लेंगे। क्या हम इसे कर सकते हैं? जी हाँ, तो ठीक है, मैं अब बहुत जल्दी करूँगा, अब बहुत ही जल्दी, और आप हम इसके मुख्य बात को ले लेंगे, तो ठीक है। अब हम कहाँ पर हैं? लेकिन कुछ चीजें मेरे पास तुम्हारे विरोध में हैं बिलाम, ये ठीक है, मुझे ये मिल गया। तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं, तो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ओह, यहाँ जब कॉन्स्टेंटाइन ने इसे किया, तो यह जब उन्होंने इस बड़े पर्व के आयोजन को तय किया, मैं उससे आगे जाने आरम्भ करता हूँ। इससे पहले कि मैं पढूं, मैं रुका रहता हूं क्योंकि पवित्र आत्मा बार बार मुझे वापस लेकर जा रहा है। यही कारण है कि तब मैंने ऐसा किया, कहा तुम उसे वापस क्यों नहीं लेते हो। देखा, यहाँ ये आता है। तो ठीक है, कारण जब उन्होंने इस बड़ी चीज को तय किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ, जिससे आप समझ जाएंगे। यह होने वाली सहशताब्दी का जन्म था क्योंकि कलीसिया धनी हो गई थी। ये उतनी धनी थी जितनी ये हो सकती है, और यह क्या थी? शक्तिशाली। यह राज्य के ऊपर थी, राज्य और कलीसिया एक साथ थे। अब परमेश्वर एक राज्य के साथ है, और क्या यीशु ने यह नहीं कहा कि वे इन राज्यों में से हर एक उसका था? उसने यीशु को ऐसा बताया, उसे संसार के राज्यों को दिखाया, कहा वो हर एक मेरा है, मैं उनके साथ कुछ भी करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। और फिर क्या परमेश्वर और शैतान को एक साथ एकजुट करें? ओह, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, निश्चित रूप से आप नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि राज्य संगठित हुए हैं, परमेश्वर इस संगठन में नहीं है, निश्चित रूप से नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके पास ये तब था, उनके पास उनकी कलीसिया थी जिसे मसीहत कहा जाता था। उन्होंने इसे राष्ट्र के साथ एकजुट कर दिया, रोम का सारा साम्राज्य इस सभी के साथ, वहाँ पर एक बड़ा बिशप सबके सब, जो कि कुछ समय बाद उन्होंने उसे पोप कहा, लेकिन उस वक्त वो एक बिशप था, और बोनिफेस तृतीय वह एक जो पहला पोप बना। तब हम पाते हैं कि यहाँ पर वो वास्तव में एक पोप के रूप में बैठा था, एक देवता जो मानव रूप में उनके पास था। उनके पास एक बड़ी वेदी थी, उनके पास बहुत सा धन था, उनके पास बड़ा जबरदस्त संगमरमर की बनी हुई वेदियाँ थी, और रत्नों के साथ ये पूरी तरह से सजी हुई थी, और इत्यादि, और उनकी बड़ी बड़ी कलीसियाएं थी। उन्होंने राज्य का नियंत्रण लिया था, और आप जानते हैं क्या, यह बात बाहर फैलने लगी कि यह सहशताब्दी थी जो सारी प्रतिज्ञाएं उन बेचारे यहूदियों के लिए थी कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया था, जिसे उसने कहा कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, और सहशताब्दी में लाने की कोशिश की इससे पहले प्रभु यीशु का आगमन हो। जब यीशु आता है, जब सहशताब्दी चालू हो जाती है, यही सहशताब्दी के आगे का जन्म स्थान है, और यही कारण है कि कैथोलिक आज तक यीशु के आगमन की शिक्षा को नहीं देते हैं। यह सब कलीसिया में है, यह सहशताब्दी है, कलीसिया के पास उसका सब कुछ है, यही बात है। देखो, सहशताब्दी के आगे, ओ प्रभु यीशु की वापसी के बिना ही सहशताब्दी, ऐसा कॉन्स्टेंटाइन की हत्या के अंत तक चला, जो 312 और एडी 312 और 606 के बीच में आता है। उसके बाद बोनिफेस तृतीय को सारे विश्व का बिशप या पोप बनाया गया था, सारी विश्व की कलीसिया के ऊपर। मैं विश्वास करता हूं कि हम इस पद को समाप्त करेंगे और तब यह मेरे पास होगा। परमेश्वर की स्तुति हो। देखा, अब मैं बस एक मिनट के लिए इसे लूंगा। 17वां पद, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। क्या आप बल्कि कल रात तक रुकेंगे या अभी लेना है? अच्छी बात है। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को अब प्रभु यीशु के नाम में समझ को देंगे कि वे हर एक जगह और जहां जहां टेप जाते हैं वे समझ सके, कि वे जान सके कि मैं जो इसे कहता हूं, क्योंकि ये दैविक अनुवाद है जिसे आपने मुझे दिया है। आमीन। वो जो जय पाए, पहली बात जो मैं चाहता हूं आप याद रखें कि इनमें से हर एक संदेश कलीसिया को संबोधित नहीं करता है, लेकिन कलीसिया के दूत को संबोधित करता है। यहां वापस देखें, इस पहले को कलीसिया, जो कलीसिया के उसके एफिसस की कलीसिया के दूत को, क्या ये सही है? तो ठीक है। अगली कलीसिया का युग, 8वां पद, इस मुरणा की कलीसिया के दूत को, तो ठीक है। और 12वां पद, पिरगमुन की कलीसिया के दूत को, क्या ये सही है? संदेश कलीसिया के अगुआ करने वाले को संबोधित किया है। परमेश्वर उस मनुष्य की सहायता करे जो उस संदेश से दूर हो जाएगा। लेकिन इसे एक दूत को दिया गया था और दूत उसके हाथ में था, उसके खुद के नियंत्रण में, जो अपने में से बढ़ती हुई सामर्थ को इसे दे रहा था उसके दाहिने हाथ से। वे उसके दाहिने हाथ में हैं, अर्थात वे सर्वोच्च सामर्थ में हैं जिससे वे यहाँ धरती पर होते हैं, क्योंकि वे यहाँ उसी में का उजियाला है, उस कलीसिया के युग के लिए उजियाला दे रहे हैं। देखा, कलीसिया के दूत के लिए, तारे के लिए संबोधित है जो उस युग के लिए उत्तरदायी है। कलीसिया का दूत उत्तरदायी है यदि वह वचन को प्रचार नहीं करता है। यह सही बात है। और उस दूत को न्याय में उत्तर देना होगा। यहाँ कितने लोग को याद है, जो लगभग ज्यादा समय नहीं हुआ, यहाँ देखें, जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था और पवित्र आत्मा आया और मैंने पीछे देखा, मेरी पत्नी वहाँ पर थी और वहाँ पर मैं लेटा हुआ था और वहाँ मैं उपस्थिति में चला गया और मैंने उन सभी लोगों को देखा। और आपको यह याद है जिसे मैंने बताया था? आप सबको याद है? देखा, और मैंने कहा तो ठीक है, क्या वे? उसने कहा वे आपके हैं। और मैंने कहा वे सब ब्रैनम हैं? उसने कहा नहीं, उनमें से लाखों लोग थे। उसने कहा यह आपसे परिवर्तित लोग हैं। और मैंने कहा परिवर्तित? उस महिला को देखो जिसकी आप इतनी प्रशंसा कर रहे थे, युवा और सुंदर। कहा उसने 90 वर्ष की उम्र बिता दी थी, तब तुमने उसकी मसीह की ओर अगुवाई की थी। और मैंने कहा ओह, मैंने कहा तब मैं इस पर डर गया था। और उसने कहा हम यहाँ प्रभु के आने के लिए रुके हुए हैं। मैंने कहा मैं उसे देखना चाहता हूँ। कहा आप उसे अभी नहीं देख सकते, लेकिन उसने कहा वो जल्द ही आएगा, हम उसके लिए रुके हुए हैं। लेकिन जब वो आता है तो वह पहले आपके पास आएगा और आपके द्वारा प्रचार किए गए सुसमाचार के अनुसार आपका न्याय होगा और हम आपके लोग होंगे। ठीक है, मैंने कहा तुम्हारा मतलब है कि मैं इन सभी के लिए उत्तरदायी हूँ, हम सबके लिए? मैंने कहा अच्छा, हरिजन के लिए होगा? उसने कहा आपने एक अगुवाई करने वाले की नई जन्म लिया था। और मैंने कहा अच्छा, क्या हर कोई उत्तरदायी होगा? उन्होंने कहा हर एक अगुवाई करने वाला। मैंने कहा संत पौलुस के बारे में क्या है? कहा वह उसके युग के लिए उत्तरदायी होगा। तो ठीक है, मैंने कहा मैंने उसी सुसमाचार का प्रचार किया जो उसने किया था। और लाखों आवाजें ऊपर उठने लगी। कहा हम उस पर विश्राम कर रहे हैं। देखा आप वहाँ पर हैं विश्राम करते हुए। तो प्रभु का दूत जो कलीसिया के लिए संदेश वाहक है वो उत्तरदायी है यदि वो वचन को प्रचार नहीं करता है। तो ठीक है, छिपा हुआ मन्ना, आइए हम सबसे अच्छे अनुवाद को दें जिसे हम दे सकते हैं। छिपा हुआ मन्ना किसकी प्रतिछाया है। छिपा हुआ मन्ना वो एक मन्ना था जिसे उस स्थान पर रखा गया था, या बाइबल में एक भेंट की रोटी जो केवल याजक के लिए थी। यहाँ पर कितने लोग जानते हैं? देखा, अब यह उनके लिए नहीं था, उनके पास सभा के लोगों के लिए एक रोटी थी, लेकिन याजक के लिए एक विशेष रोटी थी। क्या ये सही है? यह एक विशेष रोटी है, एक विशेष रोटी, छिपा हुआ मन्ना है। यह क्या है? हमारा मन्ना कौन है? मसीह। तो ठीक है, संत यूहन्ना छठवा अध्याय 48वें पद से लेकर 50वां पद, यदि आप इसे लिख रहे हैं, तो यीशु ने कहा कि वो जीवन की रोटी है जो स्वर्ग से परमेश्वर से उतरी है, वो मन्ना। तो ठीक है, छिपा हुआ मन्ना क्या है? वो मन्ना जो सभा के सभी लोगों को नहीं दिया गया है, प्रकाशन कलीसिया के दूत के लिए उड़ेला गया है, वो वचन का प्रकाशन, समझे? वचन का प्रकाशन उस युग के दूत को दिया जाता है, क्योंकि यह हर कहीं से छिपा हुआ है और वापस प्रकट हुआ है। वो छिपा हुआ मन्ना यह कलीसिया के दूत को संबोधित है। देखा, आपने इसे समझा? यह थोड़ा अधिक प्रकाशन है कि मसीह क्या है। हो सकता है थोड़ी ऊंची बुलावट हो। सोचता हूँ क्या लूथर ने इसे पहचान लिया? सोचता हूँ क्या वेस्ली ने अपने दिन में पहचान लिया? ओ, मैं सोचता हूँ क्या संत मार्टिन ने इसे पहचान लिया? इरेनियस। अब आप जानते हैं, कलीसिया ने यहाँ तक उन पुरुषों को संत की उपाधि भी नहीं दी। वे उनके लिए संत नहीं थे, लेकिन वे वही लोग थे जिनके पीछे पीछे चिन्ह जा रहे थे। उन्होंने संत की उपाधि देने के लिए अपने अपने बिशपों और इत्यादि को लिया। क्योंकि यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ, एक महिला एक अंग्रेजी किताब की दुकान पर संत मार्टिन का जीवन किताब को लेने के लिए गई, और जब उसने कहा संत मार्टिन, और उस व्यक्ति ने किताब की अलमारी को बाहर निकाल लिया, कहा उसे इतिहास के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, पर उसे संत की उपाधि नहीं दी गई थी, समझे? इस दिन तक, लेकिन परमेश्वर के पास उसका नाम है, परमेश्वर जानता है कि वह कौन है। देखो, यही अंतर है। कोई तो उनके नाम को कुछ तो बड़े नाम में चाहता है, लेकिन परमेश्वर के लोग इस प्रकार की बातों से दूर रहना चाहते हैं। वे बड़ी बड़ी चीजों को नहीं चाहते, और बड़ी कुछ तो चीज को वे नम्र होना चाहते हैं, उस विनम्रता को चाहते हैं। ऊपर का रास्ता नीचे से होता है। वो जो खुद को नम्र करता है वह ऊंचा किया जाएगा, वो जो खुद को ऊंचा करता है उसे नीचा किया जाएगा। खुद को नम्र किया, कुछ तो बड़ा बनने की कोशिश मत करो, कुछ तो छोटा बनने की कोशिश करो, लेकिन वही बनो जो तुम हो, समझे? परमेश्वर की दृष्टि में छोटे बनो, अपनी दृष्टि में छोटे बनो, बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारे बीच में जो सबसे बड़ा है उसे सबका सेवक बनने दो। यीशु मसीह से बड़ा कौन हो सकता है जिसने खुद की कमर को बांधकर और चेलों के पैरों को धोया? एक पैर धोने वाला छोटा सा मनुष्य जो वो बन गया। स्वर्ग का परमेश्वर आकाश और धरती का सृष्टिकर्ता मछुआरों के गंदे पैर को धो रहा था, ओह, जो गोबर की खाद और इत्यादि चीजों से और रास्तों के धूल से भरे हुए थे, जहाँ उनके वस्त्रों ने इसे साफ किया था और इसे धोया। एक पैर धोने वाला छोटा सा मनुष्य जो वो था। और फिर हम सोचते हैं, हम कुछ तो हैं, हमें डॉक्टर होना है, पीएचडी, फलाना फलाना। ओ प्रभु, यह मसीह नहीं है, यह प्रेम को प्रदर्शित नहीं करेगा। उस प्रेमी यीशु मसीह को वह सभी के लिए सेवक बन जाता है। यह सही बात है। हमें एक उदाहरण को सिखाया कि हमें एक दूसरे के साथ वैसा ही करना चाहिए जैसा उसने हमारे साथ किया है। ओह, यही मेरा प्रभु है। क्या बात उसे बड़ा बनाती है, क्योंकि उसने खुद को छोटा बनाया। देखिए, यही है जिसने उसे बड़ा बनाया। मुझे अपने जीवन में कुछ बड़े लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला, और मेरे पास उन पुरुषों से मिलने का कुछ सौभाग्य मिला जो सोचते थे कि वे बड़े हैं। एक सच्चा बड़ा व्यक्ति आपको ये सोचने को लगाने की कोशिश करता है कि आप बड़े हैं, और वो खुद कुछ भी नहीं है, समझे? वे राजाओं और इत्यादि से भेंट करते हैं, और वे पुरुष जो वास्तव में महान पुरुष हैं। और आप सच्चे निष्ठावान मसीहों से मिलते हैं, उनके चिचड़े लगे हुए कपड़े, और वे इस तरह की चीजों के साथ होते हैं, और उनमें से कुछ तो एक रंग बिरंगे कागज के बक्से की तरह पुलपिट में आते हैं, और तब समझे, ओ प्रभु, तो ठीक है, ये अब तक तो ठीक है। वो छिपा हुआ मन्ना एक कुछ तो विशेष है। वो विशेष क्या है? ना ही कुछ तो क्या पवित्र आत्मा की आशीष है? ओ नहीं, यह सारी सभा के लोगों के लिए है, लेकिन छिपा हुआ मन्ना एक विशेष प्रकाशन था क्योंकि उसे दूसरों को सिखाना था, समझे? वचन का थोड़ा और अधिक ज्ञान था जिसे वो दूसरों को सिखा सका था, उसे ऐसा होना था। क्या ये सही है? आप अपने पास्टर से कभी ऊंचे नहीं रहेंगे, आप बस इतना याद रखें, देखा? और इसलिए क्योंकि वह चरवाह है जो आपको खिलाता है, यदि वह चरवाहा है तो उसे जानना होगा कि उस भेड़ को खिलाने के लिए मन्ना कहाँ पर है। क्या ये सही है? अब एक थोड़ा सा विशेष, और बस एक मिनट के लिए इसे देखे, वो प्रकाशन, वो छिपा हुआ मन्ना। अब सफेद चट्टान, उसके पास एक सफेद चट्टान होगी, इस दूत के पास एक सफेद पत्थर होगा जो एक चट्टान है। क्या ये सही है? और एक वो सही है, पवित्रता। वो एक बार एक मनुष्य से मिला और उसका नाम शिमोन था, और उसने उसका नाम बदलकर चट्टान रखा, पतरस। क्यों? उसके पास चाबी थी। क्या ये सही है? उसने उसका नाम बदल दिया और उसे एक चट्टान बनाया। क्या ये सही है? पतरस के पास चाबी थी क्योंकि वो ही एक था जिसके पास राज्य की चाबी थी। एक नया नाम इस चट्टान में, एक नया नाम लिखा गया जिसे कोई नहीं जानता सिवाय उसके खुद के। वह जानता है कि वो कौन है, लेकिन वो दूसरों को नहीं बता सकता है, देखा, समझे? कोई नहीं जानता सिवाय उसके खुद के, देखा? पतरस जानता था कि उसके पास चाबी थी, लेकिन आपने उसे इसके बारे में डींग मारते नहीं सुना, देखा? ये लोग जो इस पर डिंग मारते हैं कि वे कुछ तो हैं, आमतौर पर वे कुछ भी नहीं होते हैं। एक सफेद चट्टान, और इसमें एक नया नाम है, ना ही उसका अपना नाम, लेकिन वो किसी और का है, समझे? जो केवल वो ही स्वयं जानता है, वह जिसके पास चट्टान होती है वो नाम है। देखो, याद रखें, कलीसिया को खिलाने के लिए विशेष मन्ना, याद रखें, जब इसने कलीसिया में जगह लिया, यह वही युग था, वही समय जो ये प्रकट हुआ था, जो निकोलियन ने अपने खुद के ऊपर उनकी कलीसिया के लिए एक प्रधान को बैठाया, एक पोप को, और उसके नीचे एक सफेद चट्टान की वेदी को दिया था जो उसके नीचे थी, एक संगमरमर की वेदी। क्या यह सही है? और इसे टेकने के खंभों से जड़ दिया, और उस तरह की चीजों से जो उसके लिए बहुमूल्य थी। लेकिन परमेश्वर का यह दूत जानता था वो कौन था, एक परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के प्रकाशन के जरिए से। और जब निकोलियन ने उसके अगुवाई करने वाले को ऊपर बैठाया और उसके पैरों पर एक संगमरमर का पत्थर रखा, देखा, परमेश्वर ने उसके आत्मा से भरे झुंड के लिए उसके आत्मा से भरे अगुवाई करने वाले को ऊपर बैठाया, उसका दूत, और ये उस पर एक नाम की मोहर को लगाता है, लेकिन उसे अवश्य ही इसे प्रकट नहीं करता है, वो अवश्य ही इसे अपने आप तक रखेगा। देखो, कोई भी मनुष्य नहीं जानता सिवाय उसके खुद के। छिपा हुआ मन्ना, एक पत्थर, एक नया नाम जिसे कोई भी मनुष्य नहीं जानता सिवाय उसके खुद के, और ये कलीसिया के दूत को संबोधित किया गया था। मैं सोचता हूँ कि क्या लूथर इसे जानता होगा, मैं सोचता हूँ कि क्या वेस्ली इसे जानता होगा, मैं सोचता हूँ कि क्या दूसरे महान दूत जानते होंगे। और मैं यहाँ सोचता हूँ कि यदि जल्द ही संसार में आ रहा है वो उजाले का महान दूत जो हमारे लिए आएगा, जो हमें बाहर की ओर अगुवाई करके निकालेगा, एक महान पवित्र आत्मा सामर्थ में आएगा और हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर अगुवाई करेगा, वो शायद इसे नहीं जानता होगा, लेकिन वो इन दिनों में से किसी दिन यहाँ पर होगा। वह परमेश्वर उसे ज्ञात करवाएगा, उसे खुद को ज्ञात नहीं करवाना होगा, परमेश्वर उसे ज्ञात करवाएगा, परमेश्वर उसके अपनों को साबित करेगा। यही है जो उसने कहा जब यीशु यहाँ पर था और उन्होंने उसे नहीं जाना था। देखो, उसने कहा, यदि मैं अपने पिता के कामों को नहीं करता तो मुझ पर विश्वास मत करो, लेकिन यदि मैं अपने पिता के कामों को करता हूँ और तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते हो तो कामों पर ही विश्वास करो। क्या ये सही है? ओह, क्या ये अद्भुत नहीं है? प्रकाशन की किताब। अब आप देखते हैं कि कलीसिया कहाँ पर है, क्या देखते हैं किस तरह से वे बाहर भीड़ किए हुए हैं, क्या देखते हैं किस तरह कलीसिया यहाँ पर चली गई है। अब यह वो युग है जिस पर हम कल रात को आ रहे हैं, प्रभु ने चाहा तो। अब मुझे क्षमा करें कि मैंने आपको इतनी देर तक रोके रखा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप कुछ तो सीखेंगे और बातों को लिख रहे हैं कि जब मेरे पास यहां कुछ और भी है लगभग 3 या 4 और पन्ने हैं, लेकिन मेरे पास अभी इसे लेने का समय नहीं है, और क्योंकि यह देर हो रही है और यह लगभग 17 मिनट हुए हैं अब अभी तक, लेकिन हम इसे किताब में रख देंगे। कुछ भी हो, हमारे पास ये होगा। अब कितने लोग अपने पूरे हृदय से उससे प्रेम करते हैं? अब कितने लोग अपने पूरे हृदय से उस पर विश्वास करते हैं? ओह, अब क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ ऐसे ही खड़ा रहूँगा इसलिए क्योंकि हम संगठनों में नहीं हैं, कि हम संगठनाओं में नहीं हैं और उन चीजों को कहूँगा? क्या अब आप समझ रहे हैं भाइयों, क्यों मैं अपने सारे जीवन में उस चीज के विरोध लड़ा हूँ? देखें, यह पवित्र आत्मा था, मैं इसे खुद नहीं समझ सकता था, मैं इसे कुछ दिनों पहले तक नहीं जानता था, समझे? मैं नहीं जानता था किसने मुझे यह करने को लगाया, मैं नहीं जानता था कि हमेशा गलत तरह से जीने वाली महिलाओं और चीजों के विरोध में क्यों चिल्लाया, मैं नहीं जानता था, अब मैं जानता हूँ, समझे? अब प्रभु जानता है कि ये बातें ठीक नहीं हैं। यहाँ उन्हें सीधा इतिहास में निकाला गया है और आकर बाइबल ने कहा, अब यहाँ देखें, बाइबल ने कहा पहले से ही कि ये बातें होंगी। अब हम ये जानते हैं, क्या नहीं जानते? फिर हम उस युग के इतिहास को लेते हैं और देखते हैं कि यह ठीक उसी तरह हुआ है जैसा बाइबल ने कहा था। क्या ये सही है? तो ठीक है। तब जब हम यहाँ अपने कलीसिया के युग के लिए आते हैं और हमारे कलीसिया युग के लिए जो वो भविष्यवाणी करता है, यह बिल्कुल ठीक उसी तरह होगा जैसे परमेश्वर ने कहा था कि होगा। क्या आप ये विश्वास करते हैं? ओह, क्या आप नहीं चाहते? ओह, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसके चेहरे की ओर देखना, वहाँ हमेशा गाता रहूं उसके उद्धार के अनुग्रह को, महिमा के मार्गों पर मुझे अपनी आवाज को उठाने दें। चिंताएं सारी बीत गई, अंत में घर पर हूँ हमेशा के आनंद के लिए। ओह, मैं उसे देखना चाहता हूँ, देखना। कितने लोग चाहते हैं? वह हमेशा गाता रहूं उसके उद्धार के अनुग्रह को, महिमा के मार्गों पर मुझे अपनी आवाज को उठाने दें। चिंताएं सारी बीत गई, अंत में घर पर हूं हमेशा के आनंद के लिए। अब जैसे आप एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, आगे पीछे और यहाँ वहाँ सभी मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन के साथ, जो कोई भी ये हो, जैसे मैं इस देश में से होकर यात्रा करता हूँ, गाता हुआ जैसे मैं जाता हूँ, ओ प्राणों के लिए संकेत करते हुए, कलीसिया की ओर नहीं, क्रूस की ओर, उस गहरे लाल रंग में से होते हुए, बहुत से तीर मेरे प्राण को छेदते हैं बिना किसी के भीतर से, लेकिन मेरा प्रभु मुझे आगे अगुवाई करता है, उसकी ओर मुझे अवश्य ही बने रहना है। आइए अब खड़े हो जाएं। ओह, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसके चेहरे की ओर देखना, वह हमेशा गाता रहूं। आइए अपने हाथों को ऊपर उठाएं, उद्धार के अनुग्रह को, महिमा के मार्गों पर मुझे अपनी आवाज को उठाने दे। चिंताएं सारी बीत गई, अंत में घर पर हूँ हमेशा के आनंद के लिए। ओह, मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ, मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। अद्भुत, 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 यीशु मेरे लिए है, परामर्शदाता, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर वो है। ओ, मुझे बचाता, मुझे सारे पाप और लज्जा से बचाए रखता, अद्भुत है मेरा छुटकारा देने वाला, उसके नाम की प्रशंसा हो। मैं एक बार खो गया था, अब मुझे पा लिया है, दोषी ठहराने से आजाद हूँ। यीशु स्वतंत्रता को देता और एक संपूर्ण उद्धार को, मुझे बचाता है और मुझे बचाए रखता है। ओह, पाप और लज्जा से, अद्भुत है मेरा छुटकारा देने वाला, उसकी प्रशंसा। हर एक जन थोड़ा जोर से, अद्भुत अद्भुत यीशु मेरे लिए है, परामर्शदाता, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर वो है। ओह मुझे बचाता, मुझे सारे पाप और लज्जा से बचाए रखता। अद्भुत है मेरा छुटकारा देने वाला, उसके नाम की प्रशंसा हो। ओह कितना अद्भुत है, ओह अद्भुत अद्भुत, वो यीशु मेरे लिए है, परामर्शदाता, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर वो है। वो मुझे बचाता, मुझे सारे पाप और लज्जा से बचाए रखता। अद्भुत है मेरा छुटकारा देने वाला, उसके नाम की प्रशंसा हो। आइए एक साथ कहें, उसके नाम की प्रशंसा हो, उसके नाम की प्रशंसा हो। मेरा छुटकारा देने वाला, याद रखना कल रात 7 बजे, तब तक के लिए जब तक आप फिर से वापस नहीं आते, ऐसा करें। यीशु का नाम अपने साथ लें, दुख और विलाप की संतान, ये आनंद मिलेगा, ढांढस देगा आपको। यहाँ देखकर खुशी हुई भाइयों, प्रभु आपको आशीष दे। जहाँ कहीं भी तुम जाओ, अनमोल नाम, अनमोल नाम, ओ कितना प्यारा, ओ कितना प्यारा, धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद, अनमोल नाम, अनमोल नाम, ओ कितना प्यारा, धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद। जैसे हम प्रार्थना में सिर को झुकाते हैं अंतिम गीत या अंतिम छंद के लिए, यीशु के नाम पर झुकना, गिरकर दंडवत करते, प्रभु परमेश्वर इसे चंगा करे। प्रभु जब हमें हम उसे ताज पहनाएंगे, जब हमारी यात्रा पूरी हो जाती है,